नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा।
नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। ये चर्चा लाइव है यूट्यूब पर, हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल और इंग्लिश यूट्यूब चैनल दोनों जगह आप इसको देख सकते हैं। और एक अच्छे खासे पैनल के साथ आज हम इस चर्चा को शुरू करेंगे। चुनाव का माहौल है देश में और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जिस पर हम बात करेंगे। कुछ जानकारियां भी हैं आपको देने के लिए। जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनका परिचय मैं करवा दूं। सबसे पहले मेरे दाहिनी तरफ से मनीषा। मनीषा को आप लोग लगातार न्यूज लॉन्ड्री पर देखते रहते हैं, बहुत सारे इनके फैन हैं न्यूज सेंस के। स्वागत है मनीषा चर्चा में। और साथ में हमारे साथी हृदय जोशी हैं। हृदय जोशी की तमाम पर्यावरण से संबंधित खबरें, रिपोर्ट्स आदि आप देखते रहे,
अवार्ड विनिंग।
और हाल ही में हृदेश को रामनाथ गोयन का अवार्ड मिला है इनकी स्टोरीज के लिए। हृदेश, थोड़ा सा उस स्टोरी के बारे में बताएं जो जिसके लिए आपको अवार्ड मिला और उसमें किस तरह का वो काम था, क्या कितना टाइम लगा, थोड़ा सा।
एक्चुअली हमने 2021 में कोई 4-5 महीने कवर किया था, पंजाब से लेकर बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर तक। ये तमाम राज्य जो है वो गैंगटिक प्लेन में आते हैं, गंगा के मैदानी भाग है और यहाँ पर आर्सेनिक की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। मैं बहुत कम समय में दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आर्सेनिक जो है ग्राउंड वाटर में होता है, तो ग्राउंड वाटर का प्रयोग 1970 के दशक के बाद जैसे जैसे बढ़ता गया तो आर्सेनिक की प्रॉब्लम जो शरीर को कई हिस्सों को अपाहिज कर देती है, बीमार कर देती है, ये बढ़ती गई। और आज देश के 250 मिलियन यानी 25 करोड़ जो लोग हैं इसके खतरे में है और पूरा एक ह्यूमन रिसोर्स जो है वो संकट में है। ये जो बीमारी है ये इसलिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि अब आर्सेनिक सिर्फ पानी में नहीं रहा बल्कि पानी का इतना ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में होता है कि वो हमारी फूड चेन में आ गया है। तो अब जो लोग नहीं रहते आर्सेनिक प्रभावित इलाकों में उन लोगों को भी आर्सेनिक होने का खतरा है। बल्कि नई रिपोर्ट ये बताती है कि जो अभी नई जानकारी आ रही है कि जो मदर्स जो माँ का दूध है बच्चे को पिलाती है माएं, उसमें भी आने लगा है क्योंकि वही माएं उसी गोबर से के कंडों से या उपलों से खाना भी बना रही है। तो धुएं में भी आर्सेनिक है और उसी से
किसी न किसी तरह से फूड चेन में शामिल हो गया,
बहुत बुरी तरह फूड चेन में आ गया है। तो ये एक बड़ी समस्या है, इसी को लेकर रिपोर्ट
उसकी डॉक्यूमेंट्री है वो न्यूज लॉन्ड्री पर आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई है उसमें। और साथ में आनंद वर्धन है हमारे स्तंभकार और कॉलमिस्ट, स्वागत है आनंद आपका भी। और ऑनलाइन हमसे जुड़ रही हैं कांक्षी अग्रवाल। कांक्षी नेत्री नामक एक संस्था है, उसको उससे जुड़ी हैं, उसको संचालित करती हैं, महिलाओं के एम्पावरमेंट के क्षेत्र में काम करती हैं, लीडरशिप कैसे इवॉल्व हो महिलाओं के बीच से, इस सब पर उनका काम है। तो ये एक मोटी मोटा आज का पैनल है जो आज आपसे लाइव इंटरेक्ट करेगा। आप लोग अपने सवाल पूछिए, अपने सुझाव दीजिए इस पूरी प्रक्रिया के दौरान। जब हम 1 से 1.5 घंटे तक लाइव होंगे तो उन सवालों को भी शामिल करेंगे। और मैं एक दो और जो जानकारियां हैं उनको आपको दे देता हूं। हमारे इलेक्शन फंड जो कि इस समय न्यूज लॉन्ड्री और द न्यूज मिनट का इलेक्शन फंड है वो इस समय चल रहा है। उसमें आप अलग अलग कई सारे उसमें फंड हैं, तो आप अपनी मन चाहे जो भी विषय आपको अच्छा लगता है, पसंद है, आपको लगता है कि वो आपके मन के करीब वो विषय है, वो स्टोरीज आनी चाहिए, उसमें जाकर आप फंड कर सकते हैं, उसमें जाकर आप योगदान दे सकते हैं हमारे इलेक्शन फंड को।
इसके अलावा दूसरी चीज जो लेटर्स के लिए, जो अपील के लिए एक नया पेज बनाया गया है जिसमें लेटर्स भेज सकते हैं सब्सक्राइबर्स। और इसके अलावा पॉडकास्ट का एक नया ईमेल एड्रेस है, podcast@newslaundry.com, यानी याद रखिए podcast SB है, podcast@newslaundry.com।
तो इन सब जगहों पे आप अपने लेटर हमें जरूर भेजिए। आज भी कुछ लेटर्स आए हैं, उनको हम शामिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हृदेश इस जानकारी के लिए। मैं जल्दी से आप इस हफ्ते की सुर्खियां जो हैं उनको आपको बता देता हूं। और सबसे पहला जो हमारा महत्वपूर्ण विषय रहने वाला है आज की चर्चा में वो मामला है कि चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी और कंगना रनौत के खिलाफ जो असभ्य टिप्पणियां हुई पिछले दिनों, उसमें भाजपा के नेता दिलीप घोष है पश्चिम बंगाल से और कांग्रेस के जो कम्युनिकेशन सेल है उसके नेता हैं सुप्रिया श्रीनेत, इन दोनों को नोटिस जारी किया है। सुप्रिया श्रीनेत ने कथित तौर पर एक कमेंट लिखा था अपने इंस्टाग्राम पर जिसमें उन्होंने कंगना रनौत को टारगेट किया था। आज मनीषा है हमारे साथ और कांक्षी है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि राजनीति में खासकर जब बातचीत होती है हमारी और तो आमतौर पर ये देखने में आता है कि कहीं ना कहीं जो समाज का एक सच है पैट्रियार्की, वो बहुत विद्रूप में, बहुत खुले रूप में सामने आती है और अक्सर महिलाएं उसका बहुत निशाना सबसे खुले आम बनती हैं। तो ये क्यों इतना आसान है, इसके और क्या क्या पहलू हैं, उन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे हम। एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जो कि जेल में बंद गैंगस्टर और नेता मुख्तार अंसारी, उनकी मौत हो गई बांदा जेल में। एक्चुअली वो हॉस्पिटल में ले जाए गए थे वहां तबीयत खराब होने के बाद, और हॉस्पिटल ने एक मेडिकल बुलेटिन जारी कर कहा कि कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई कल रात। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा लोकतंत्र की रैंकिंग में भारत का स्थान गिरने के बाद अब लोकतंत्र का एक नया भारतीय सूचकांक बनाने पर भारत सरकार विचार कर रही है। इसके लिए उसने ORF नाम की एक संस्था है उससे संपर्क किया है और उसको इस दिशा में काम करने के लिए कहा है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार आरोप लगाया है और इस बार की एक तरह का टैक्स टेररिज्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ। आप लोगों को अगर जानकारी नहीं है तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर जो बैंक अकाउंट है उनको इनकम टैक्स विभाग ने सीज कर दिया है, फ्रीज कर दिया है, और इस बाबत कांग्रेस पार्टी के लीडर जो है, तमाम जो शीर्ष लीडर है, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस जानकारी दी है कि उनके पास चुनाव में खर्च करने के लिए, कामकाज आगे बढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। एक तरह का लेवल प्लेइंग फील्ड जो चुनाव में होना चाहिए विपक्षी पार्टियों के पास, वो भी नहीं है। दिल्ली की शराब नीति से संबंधित जो कथित घोटाले में गिरफ्तार हुए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी हिरासत की अवधि 28 तारीख को जो पूरी हो रही थी उसको अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 अप्रैल तक बढ़ा दी है। ईडी का कहना है कि उसे कुछ चीजों को स्थापित करने के लिए और समय चाहिए। तो देखते हैं ये मामला कब तक पहुंचता है, क्योंकि इस मामले में और भी बहुत सारी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हो चुकी हैं पहले ही, और वो सारे लोग अभी भी जेल में हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री संजय सिंह हों, और विजय नायर हों, के कविता हों, तो ये सारे लोग लंबे समय से जेलों में हैं। अरविंद केजरीवाल के बारे में भी ऐसा कहा जा रहा है। तो एक थोड़ी सी एक कमेंट्री हम कर सकते हैं, हालांकि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी का पूरा मामला था उसमें तो हमने काफी दिलचस्पी और बड़े विस्तार से पिछले एपिसोड में बात की थी, लेकिन एक चीज जो मुझे लगता है कि इस पैनल से एक कॉमेंट ले लिया जाए वो ये है कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा संकट ये है कि एक तरह का टॉप पे एकदम लीडरशिप वैक्यूम हो गया है, और इलेक्शन के ठीक सामने एक इतना बड़ा वैक्यूम है जब आपको जरूरत पड़ती है कैंपेन की, कैंपेन स्ट्रेटजी बनाने की, विरोधी पार्टियों से निपटने की जो रणनीतियां हैं वो, तो उसके लिए इन लीडर्स की जरूरत पड़ती है। और इसके अलावा भी और बहुत अंदरूनी चीजें होती हैं, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, चाहे ये हो, उन सब के में एक तरह से सीध लग गई है या वो ब्रेक लग गया है आम आदमी पार्टी के लिए। तो ये कितना बड़ा धक्का है, एक अकेली पार्टी है जो हाल फिलहाल के समय में हमारे सामने आई और जिसके पास दो दो मुख्यमंत्री, दो दो राज्य थे, बड़ी बड़ी रीजनल पार्टियों के पास दो राज्य नहीं है कहने को, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे डीएमके हो, चाहे स्टालिन हो,
कांग्रेस के पास भी दो ही राज्य,
कांग्रेस पास। तो उस लिहाज से देखा जाए तो एक बड़ी ताकत बनकर आम आदमी पार्टी देश की राजनीति में उभरी है, लेकिन अब एक बड़े संकट से गुजर रही है। तो आगे का ये पूरा जो समय है जो लीडरशिप वैक्यूम के लिहाज से, वो लोकसभा चुनाव में कैसे उसको प्रभावित करा, मनीषा, हृदेश, आनंद, सबकी एक एक।
अभी मार्च 31 को एक मीटिंग तो हो रही है जिसमें कि आपको परमिशन मिल गई है प्रोटेस्ट की, और सारे जो इंडिया के नेता हैं प्रोमिनेंट वो आ रहे हैं यहाँ पे। तो लोकसभा में तो यही डिपेंड करते कि इंडिया कैसे मोबिलाईज कर सकती है अपने वोटर्स को और आप अपने काडर को कि लोग आए और वोट दें। लेकिन मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, स्टार कैंपेनर्स उनके पास नहीं है इस इलेक्शन में, और नॉट जस्ट फॉर दिल्ली, लेकिन जहां भी आपका कैंपेन होता है दो फेसेस तो यही है, मनीष और अरविंद केजरीवाल, सिर्फ आतिशी और सौरभ, संजय सिंह ऑल्सो, ओनली आतिशी एंड सौरभ इज ऑल्सो। और एक चीज और है जो हमको अभी पता ही है, इतने न्यूज मतलब 2-3 साल से हो रहा है पार्टी का जोड़ तोड़, एक चीज पार्टी के लिए मेरे ख्याल से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट ये भी है कि अरविंद जो अपने MLAs पे कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं, मनीष जो करते हैं, सत्येंद्र जैन, ये टॉप लीडरशिप के बाहर होने से MLAs का पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियों में जाना, ये एक बहुत मुझे लगता है ज्यादा बड़ा फियर है आपके लिए इस वक्त। और ये लोग बोल ही रहे हैं इंटरव्यूज में, बोल ही रहे हैं कि भाई ऑपरेशन लोटस चल रहा है ये वो, लेकिन अगर इतनी टॉप लीडरशिप जो इतना एक्सरसाइज करती है कंट्रोल MLAs पे, वो जेल में है, तो पार्टी का एग्जिस्टेंस
क्या होगा।
पंजाब में ये दिखा भी, पंजाब में उनके इकलौते जो लोकसभा के मेंबर थे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया।
मैं इसमें दो बात कहना चाहता हूँ, एक तो जो मनीषा ने ध्यान खींचा हमारा कि जो यहाँ पर रैली होने वाली है या प्रोटेस्ट जो भी होने वाला है, इसमें सारे नेता आ रहे हैं इंडिया के, उसमें तृणमूल कांग्रेस के भी लोग आ रहे हैं, जो पहले एक प्रोटेस्ट हुआ था उसमें शायद नहीं गए थे उनके लोग, अगर मुझे ठीक से मालूम है, लेकिन वो यहाँ आ रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की एक इक्वेशन है, वो राहुल गांधी और उनके साथ परेशान है लेकिन उनको अरविंद केजरीवाल से कोई मुश्किल नहीं है। तो दो एमपी वो लोग अपने, मैं जानकारी के तौर पर बताऊं, दो एमपी अपने उस प्रोटेस्ट में वो लोग भेज रहे हैं।
चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव भी आ रहे हैं।
हाँ, मैं टीएमसी की बात कर रहा हूँ जिनके थोड़े टाइट रिलेशन, हाँ, और झारखंड की जैसे आपने बात कही और अखिलेश यादव, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ एक प्रॉब्लम जो है वो पावर जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी ये है कि राहुल गांधी पर वो ये कह सकते हैं कि ये डायनेस्टी से जुड़े हुए हैं, ये शहंशाह हैं। मुझे एक मेरा असेसमेंट है या मेरे को ऐसा पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के तौर पर आप ये ऐसे देख सकते हैं कि उनके जब वो सब पूरे देश में अरविंद केजरीवाल घूमेंगे तो शायद मोदी जी को उनसे ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ही स्ट्राइक्स जो कहते ना, जो वो लोगों से बेहतर जुड़ेंगे इस मामले में, क्योंकि वो उनका चेहरा नया है, वो बैगेज नहीं है, सेल्फ मेड है, उनकी पार्टी उनके लिए बैगेज नहीं है। अखिलेश के साथ एक दिक्कत हो जाती है कि पार्टी उनकी बैगेज हो जाती है, तो इसलिए उनका भीतर रहना एजेंसियों ने किया, हम ये तो नहीं कह सकते कि उन्होंने किया, एजेंसियों ने उनको आरोप में पकड़ा है, तो उनका भीतर रहना ज्यादा मुफीद है उनके लिए, वनस्पत के राहुल गांधी के प्रचार करने से उन्हें उतनी दिक्कत शायद नहीं है।
राहुल गांधी के मामले में तो शायद बीजेपी अंदर अंदर ये सोच के खुश रहते कि ये जितना बोले उतना बेहतर, कुछ न कुछ वो पकड़
लेते हैं, ऐसा अंदर अंदर क्या खुल के कहते हैं इस बात को,
कुछ न कुछ पकड़ लेते हैं या ट्विस्ट कर देते हैं उनकी बातों को,
वैसे भी जो बोलते हैं तो उसको फिर उनको
फ्लुएंट कम्युनिकेटर
आसान रहता है कि उसको टर्न अराउंड करके उन्हीं पे हमला किया जाए।
आनंद,
मेरे विचार में जो कैंपेन है वो धारणाओं की दिशा क्या होगी उस पर, क्योंकि इस जो अरेस्ट है, गिरफ्तारी है, उसमें दो तरह की धारणाएं, एक विक्टिमहुड की जा सकती है और एक है कि भ्रष्ट का लेबल चिपकाया जा सकता है। तो विक्टिमहुड कार्ड इस कैंपेन में अगर ज्यादा चलता है, क्योंकि बहुत पहले, अब जो डिजिटल स्पेस है उसमें जनता से संपर्क साधने के और भी कई तरीके हो गए हैं, जैसे जब 97 में लालू गिरफ्तार हुए थे या फिर उसके बाद भी उनके कन्विक्शन हुए, तो वो जेल जो है हाथी से जाते थे, और हाथी से जब जेल से निकलते थे तो हाथी से जैसे कि बहुत बड़ी कोई उपलब्धि हो, तो वो डिजिटल समय नहीं था वो, लेकिन समाचार पत्रों में जो चित्र प्रकाशित होते थे तो वो, लेकिन आज जो है वो विक्टिमहुड खेलना ज्यादा आसान भी है, तो एक तो एक रास्ता खुलता भी है। दूसरी बात जो हृदेश जी ने कही, लेकिन ये पहली बार तो है नहीं कि वो देशव्यापी चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले भी वो देशव्यापी
2014 में है,
करीब मतलब एक दशक का समय रहा है जब वो राष्ट्रीय राजनीति में एक भूमिका निभाने की स्थिति में रहे हैं, तो अगर पहले नहीं ये चल पाया है तो फिर संभावनाओं का है कि किस तरह से। दूसरा है एक जो आप एक है जो उनके लिए जो आपने जिस ओर इशारा किया कि जो संसाधनों को ब्लॉक करना है वो एक बड़ी समस्या हो सकती है, और दूसरा है कि काडर का बिखराव, और लेकिन उसमें यह भी है कि सेंट्रलाइज्ड पार्टी है, जैसे आमतौर पर रीजनल पार्टीज होती हैं, हालांकि तकनीकी तौर पे यह अब राष्ट्रीय पार्टी है, तो अब इसमें है कि इस व्यवस्था के चलने में कितने लोगों ने सस्टेनेंस डेवलप किया है आपकी व्यवस्था में, क्या आपका जो एक आप सिस्टम है उसमें सिर्फ सेंट्रलाइज लीडरशिप का स्टेक्स था, अगर वो नहीं था, एक कार्डर का भी स्टेक है, वो जो करियरिस्ट भी हैं जो राजनीति में अपना करियर देखते हैं, अगर वो ज्यादा डाइवर्स है, वो स्टेक्स ज्यादा डाइवर्स है, ज्यादा फैलाव है उसका, तो तब इसका कम असर पड़ेगा, लेकिन अगर बहुत कम लोगों का स्टेक्स है आप सिस्टम के चलने में, तब इसका असर ज्यादा हो।
ये महत्वपूर्ण बात है जो आनंद ने उठाई है, और आजकल ज्यादातर पार्टियों में इस चीज का अभाव ही दिखता है, लेफ्ट को छोड़ दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया जाए, तो ज्यादातर व्यक्ति केंद्रित पार्टियां ही हैं, इसलिए
मैं एक और चीज ऐड करना चाहती थी अतुल इसमें जो हम सब सुन रहे थे। ये जो पर्टिकुलरली मुझे जितना दिखाई दे रहा है कि अभी पार्टी के सामने दो चुनौतियां हैं आम आदमी पार्टी के सामने, वो ये है कि एक या तो वो चुनाव लड़े या वो जो सेंटिमेंट वो इतने टाइम से नहीं बिल्ड कर पाए हैं अक्रॉस स्टेट्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप पार्टी का जो संगठन है वो संगठन बहुत ही कमजोर है। उनका पंजाब भी एक लॉस्ट चांस हो गया, राइट? आपने जैसे कहा कि वहां पे परफॉर्मेंस ऐसी बहुत अच्छी नहीं हो पाई, एक एक लौते जो एमपी थे वो भी बीजेपी चले गए। तो अभी चुनौती दो तरह की है कि क्या वो अपने आप के कार्यकर्ताओं में इतना सेंटिमेंट बिल्डअप कर पाए उनके जेल जाने से कम संगठन मजबूत हो जाए, चुनाव तो लड़ना आगे की बात है, और वो साथ में ये लीगल बैटल को भी जीत पाए। दैट इज ऑल्सो बिग क्वेश्चन राइट नाउ, राइट? क्योंकि एक एंटी करप्शन मूवमेंट से बना हुआ चीफ मिनिस्टर अगर करप्शन के मामले में ही अंदर जाता है तो इट्स अ बिग ट्रैजेक्टरी, राइट? फॉर कार्यकर्ता ऑल्सो ये बड़ी ट्रैजेक्टरी है, वोटर के लिए भी एक बड़ी बात है कि सच में ऐसा हो सकता है क्या। तो क्या अभी वो वापस से अपना ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे अपने संगठन में और साथ ही साथ अपने वोटर में? चुनाव लड़ना नहीं लड़ना वो तो मतलब हमें पता ही है कि लैक ऑफ वैक्यूम ऑफ लीडरशिप है, और ये इतना रेट्रोस्पेक्ट में ये भी दिखाता है कि जब से ये राजनीति चालू हुई है आम आदमी की, एक थर्ड फ्रंट की राजनीति, प्रोफेशनल्स आएंगे राजनीति को क्लीन करेंगे, उन लोगों ने अपार्ट फ्रॉम अरविंद केजरीवाल द ब्रांड बिल्डिंग डिड नॉट हैपन अक्रॉस आम आदमी, राइट? आम वो एक रिसोर्स सेंटर कहीं ना कहीं केजरीवाल ही रहे। तो वो भी हम देख रहे हैं कि एक रेट्रोस्पेक्ट में कोई भी अगर पार्टी बना रहा है तो उसकी क्या कमियां हो सकती हैं, उन किन कमियों पर हमको काम करने की जरूरत है।
ठीक बात।
एक वीडियो जो उनका जारी हुआ अभी, जारी हुआ मतलब जो वीडियो उन्होंने कोर्ट में जो बोला और जिसको बना के ट्रेंड कर रही थी,
जो आनंद कह रहे थे कि डिजिटल यूज कर सकते हैं, तो वही करा है कल आम आदमी पार्टी ने। अरविंद केजरीवाल ने जो कोर्ट में बोला उसका रिकॉर्डिंग पूरा व्हाट्सएप पे वायरल
हुआ। कम से कम जो एक बात है इस पे डिबेट तो कम से कम होगी, सच के पे अगर हम कंक्लूजन पे अराइव ना भी हो, ये बात जरूर है कि जो जो अप्रूवर होते गए या जिन जिन जो जो दोज ऑल फेल इन लाइन वो लोग जो हैं फिर उसके बाद बरी
एक होते तो बीजेपी के लिए कैंपेन कर रहे हैं।
तो इसमें जो सरसचंद की बात है, जो अरविंदो फार्मा के जो मालिक हैं, अब उनकी उनका उनकी तरफ इशारा है कि कैसे वो इस मामले में पहले गिरफ्तार होते हैं, 6 महीने तक जेल में रहते हैं और फिर वो सरकारी गवाह बन जाते हैं और उसके बाद फिर उनको जमानत तुरंत मिल जाती है, जमानत मिलने के साथ ही 5 दिन के अंदर वो बड़ी संख्या में इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं, वो सारा इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को देते हैं, करीब
पहले भी देते हैं,
पहले भी 5 करोड़ पहले देते हैं और उसके बाद भी देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो एक तरह से
जिसको यूज करेगी आम आदमी पार्टी
और क्विड प्रो को की तरफ इशारा करती है, लेखा से लेन देन की भी तरफ इशारा करती है, ये सब चीजें हैं जो कोर्ट में एक टाइम पे शायद इनकी बातचीत
हो। अप्रूवर है राघव रेड्डी, वो टीडीपी के लिए जो बीजेपी के आले हैं उनके लिए वो कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं।
तो कुछ और सुर्खियां हैं जल्दी से मैं पढ़ देता हूं। एक तो इसी दिल्ली की जो शराब नीति वाला मामला है, इसमें आम आदमी पार्टी की जो गोवा इकाई के प्रमुख है अमित पालेकर, उनको भी ईडी ने नोटिस जारी किया है। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों का जो बंटवारा था वो फिर से लटक गया है, उसमें एक फांस आ गई है। पूर्णिया की सीट को लेकर कांग्रेस और आरजेडी आपस में उलझ गए हैं और ये पूर्णिया की वो सीट है जिस पर पप्पू यादव का दावा है, जिन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया है। ईडी ने फेमा यानी विदेशी मुद्रा विनियम कानून जो है उसके उल्लंघन के मामले में जो तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा है उनकी संसदी खत्म कर दी थी भारतीय जनता पार्टी ने, सॉरी सरकार ने, जो लोकसभा अध्यक्ष ने, अब वो उनको एक नया नोटिस इस मामले में फेमा के तहत भेजा गया है। और चुनाव लड़ने के लिए जरूरी पैसा नहीं होने की बात कहकर जो वित्त मंत्री है हमारी निर्मला सीतारमन ये अपने आप में इतना बड़ा आयरनी है कि इस देश का जो कहें कि दीवानी खजाना है वो कह रहा मेरा खजाना खाली है, वजीरे खजाना उसका खजाना खाली है, वो कह रहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकती। तो ये हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन उनका ये कहना है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी करके बताया है कि देश में टीवी के जो मामले दर्ज होने की दर है वो बहुत ऊपर चली गई है, लगभग सारे मामले अब अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, दर्ज हो रहे हैं और 95% मरीजों को इलाज मिल रहा है और वो स्वस्थ भी हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है एक समय पर इस बीमारी को मौत की गारंटी माना जाता था।
मैंने खबर पढ़ी नहीं है, परंतु मैं इसको जानना चाहूंगा क्योंकि मैंने इस पे काम किया सब्जेक्ट में। भारत की समय या दुनिया की, इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत इसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है। और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में अभी स्थिति यह है कि कुछ ही कंपनी, एक कंपनी है उसका नाम मिस कर रहा हूँ, उसी के पास उसका पेटेंट है। तो ये कहना कि सबको दवा मिल रही है, कम से कम एमडीआर टीबी के बारे में सच नहीं हो सकता, क्योंकि पेशेंट को अस्पताल में बुला के दवा खिलाई जाती है। तो मैं कोई बात इसको अभी निगेटिव
नहीं, 95% ही कहते हैं, कह रहे हैं
नहीं, वो बहुत स्थिति बहुत खराब है उसकी, क्योंकि मैंने उसको कवर किया है, तो मैं इसको पढ़ के मैं कमेंट करूंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ क्योंकि
ये चूंकि सरकार का दावा है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो हम इस पर आपको और भी बाकी जानकारियां पहुंचाने की कोशिश करेंगे। रूस की राजधानी मॉस्को के एक कंसर्ट हॉल में हुए आतंकवादी हमले में कम से कम 135 लोगों की मौत हुई है, 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस के खुरासन गुट ने ली है। और गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से आफ्सपा, जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल एक्ट है, वो हटाने पर विचार कर सकती है। ये अब इस हफ्ते की जो महत्वपूर्ण सुर्खियां थी,
एक सुर्खी में भी जोड़ दूं वो ये कि मार्च के दूसरे हफ्ते में ही तापमान जो है वो कई जगह 41 डिग्री पार कर गया है
जी।
और ये एक बहुत बड़ी जल संकट जो आने वाला है। बेंगलुरु की हालत हमने देखी 2019 में, हमने चेन्नई की हालत देखी, तो उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट ग्लोबली नजर डालेंगे आप तो ब्राजील में, जिसे हम हीट इंडेक्स कहते हैं कि आपको फील्स लाइक कितना महसूस हो रहा है, वो 60 डिग्री से ज्यादा क्रॉस कर गया, अभी रिकॉर्ड बन गया वहां पर। और ऐसा ही हालत जो है वो कुवैत सिटी की है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि वहाँ 52 डिग्री तो टेम्परेचर पहुंच चुका है, तो वो रहने लायक नहीं रही। तो आने वाले दिन जो है जल संकट के लिहाज से और गर्मी के लिहाज से बहुत मुश्किल
चिंताजनक है। हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं, जो कि चर्चा का आज का जो महत्वपूर्ण पहला विषय है, और वो है जो राजनीति। जब भी चुनाव आते हैं तो हम अक्सर देखते हैं किसी न कुछ मुद्दों को लेकर, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन की बात आती है, एमसीसी के उल्लंघन की बात आती है। ये जो मामला है, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिन पहले ऐलान किया कि वो हिमाचल प्रदेश की जो मंडी लोकसभा सीट है, वहां से फिल्म स्टार जो है कंगना रनौत, उनको टिकट दिया, उसने चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की हेड हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, और वो ट्वीट कुछ इस तरह का था कि जिसमें, जिससे ये संदेश जाता था कि एक महिला के नजरिए से उसे ठीक नहीं कहा जा सकता, और उसके बाद काफी उसकी लानत मलानत हुई। एक चीज इसका जो एक पहलू ये है, जो हमेशा कहा जाता है, कि क्या इस मामले में उन्होंने अपनी गलती को का एहसास किया या उसको स्वीकार किया। तो सुप्रिया श्रीनेत ने इस मामले में इस गलती को स्वीकार किया और इस भूल के लिए, और फिर उस ट्वीट को डिलीट भी किया गया। इसी मामले में एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं, मृणाल पांडे, बहुत वरिष्ठ हैं, और उन्होंने भी ऐसा ही कुछ मिलता जुलता सा एक ट्वीट किया था, बाद में उन्होंने भी इस ट्वीट को डिलीट किया, उनकी भी काफी लानत मलानत हुई। दूसरी तरफ एक और ऐसा ही मामला आया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के नेता हैं दिलीप घोष, उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ, उनके पिता के खिलाफ कुछ ऐसे ही असभ्य टिप्पणियां की। दोनों को नोटिस भेजा है चुनाव आयोग ने, और सफाई मांगी, जानकार उनसे कारण जानने की कोशिश की है। मनीषा, एक बार 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 आती है, जब हम केवल इसी मामले को अगर देखें, तो इस मामले में तो ये है कि महिलाओं ने ही महिलाओं के ऊपर एक कमेंट किया जैसा दिख रहा है, पर इन जनरल एक स्थिति ऐसी भी होती है कि जब कोई महिला नेता आती है या महिला उस तरह से, तो एक जनरल हंटिंग की मेंटेलिटी देखने को मिलती है, खासकर सोशल मीडिया पर। वो एक तो बड़ा मसला है कि ऐसे में किसी नए आदमी के लिए कहाँ स्पेस बचता है, किसी नई महिला के लिए कितना स्पेस बचता है। और ये जो स्थिति है पॉलिटिक्स में, इतना मुश्किल क्यों है कि कोई महिला आती है तो उसको इसी नजर से क्यों देखा जाता है, या इसी तरीके से उसको ट्रीट करके? क्या ये केवल ये है कि एक असुरक्षा है, जिस इनसिक्योरिटी से कि पहले ही बार में उसको पूरी तरह से डिस्क्रेडिट कर दो, या इतना डिफेंसिव पहुंचा दो कि वो मैदान छोड़कर चला जाए, या किसे, ये क्या काम क्या करता है
पॉलिटिक्स में? तो फिर भी जो महिलाएं आती हैं, काफी जो हैं वो एक पॉलिटिकल फैमिली से भी आती हैं काफी। हालांकि अगर हम ममता बनर्जी को देखें या मायावती को देखें, ये लोग
सेल्फ मेड
है, बट काफी आती हैं पॉलिटिकल फैमिली से, और उनको भी ये सहना पड़ता है। आई थिंक स्मृति ईरानी, बहुत लंबे समय तक उनका जो टीवी का करियर है उसी के बारे में बात होती थी। इनफैक्ट मुझे याद है टेलीग्राफ का जो हेडलाइन भी था एक, मतलब हम हर चीज इसमें पन करना कि वो सास बहू सीरियल कर रही हैं। तो मुझे लगता है ज्यादा प्रॉब्लम स्पेशली एक्ट्रेसेस को होता है जो फिल्म लाइन से इसमें आती हैं, उनके बारे में ज्यादा बोला जाता है कि नौटंकी वाली हैं या
नाचने
गाने वाली हैं, ये सब चीजें। इस केस में एक तो पहले दो तीन चीजें इसके बारे में, एक तो कंगना रनौत का खुद का जो मोटर माउथ करियर रहा है, जब वो अपना मेरे ख्याल से पिछले 4 साल से वो इसी का ऑडिशन दे रही थी कि कब वो बीजेपी एमपी बन जाए, तो इस लंबी ऑडिशनिंग में उन्होंने बहुत कुछ बोला है उर्मिला मातोंडकर को सॉफ्ट पोर्न एक्ट्रेस। और अभी मैं टाइम्स नाउ में इनफैक्ट मैं देख रही थी, समिट हो रहा था, तो उससे उनसे पूछा गया कि आपने भी तो ऐसे बोला है, तो वो कह रही है कि नहीं तो सॉफ्ट पोर्न में क्या गलती है, पोर्न एक्ट्रेस की तो बड़ी रिस्पेक्ट होती है, सनी लियोनी की इतनी रिस्पेक्ट होती है, तो मैं तो उनको रिस्पेक्ट दे रही थी, जो कि बकवास है, वो रिस्पेक्ट नहीं दे रही। बट मीडिया टाइम्स नाउ के उसमें लोग तालियां बजा रहे हैं कि कितनी अच्छी बात बोली। रिहाना को उन्होंने पॉर्न सिंगर बोला, जब ये सुशांत सिंह का पूरा हो रहा था तब उन्होंने रिया के जो उनकी गर्लफ्रेंड थी उस टाइम पे उसके अगेंस्ट विच हंट बहुत बुरा, तो इतना सब उन्होंने करा, फाइनली वो एमपी बन गई। अब कांग्रेस सुप्रिया सुनेत हैं, आपको उनको टेक ऑन भी करना है तो आप अपने ही पैर में कुल्हाड़ी वही चीज कर रहे हैं जब वो करती आ रही है। और मृणाल पांडे खास करके मुझे लगता है, चलो पॉलिटिक्स में तो फिर भी जो भी बोलते हैं, लेकिन एक जर्नलिस्ट होने के तौर पे आपको पता होना चाहिए कि मंडी का शब्द आप किस तरह यूज कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है। और कोई मतलब ही नहीं बनता है कि आप उनके बारे में ऐसा कुछ बोलें, क्योंकि बहुत कुछ है ऑलरेडी, अगर आप उनको क्रिटिसाइज करना है तो आप बहुत सारी चीजों पर कर सकते हैं, आप सीधा मंडी पे जा रहे हैं, बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट और क्रास।
कांग्रेस के बारे में एक बात कही जाती है,
अपने पैर में कैसे कुल्हाड़ी
मारते हैं, आमतौर पर लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, कांग्रेस के बारे में ये कहा जाता है कि कांग्रेस ही अपना पैर कुल्हाड़ी पे ले जाके मार देता है कई बार।
तो ये तो मुझे लगता है मतलब उन्हीं की कांग्रेस का ही बड़ा इशू है, और मेरे ख्याल से मृणाल पांडे क्योंकि वो जर्नलिस्ट हैं इसलिए हम ज्यादा उनपे
उनके साथ ये भी नहीं है कि आप भाषा की समझ नहीं है या आप उस लैंग्वेज में मात खा गई या वहां पर। कांक्षी आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पूरे उस पे।
जी अतुल जी, ये जो मुद्दा है क्योंकि ये बहुत सारी लेयर्स में है, मैं वहां से स्टार्ट करूंगी कि वाई कैरेक्टर असैसिनेशन सबसे इजी टूल देखा जाता है, जैसे ही कोई महिला अगर राजनीति में आई है या तो उसको ये डराया जाता है, और मैं ये अपने मतलब नेत्री और जो भी पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस है उसके उसके अंतर्गत बात कर रही हूँ, कि या तो आपको डराया जाता है कि ये देखो आपके साथ होगा तो आप इसके लिए या तो तैयार हो जाओ। अभी अभी हम एक 25 महिलाओं का बूट कैंप कर रहे थे मध्य प्रदेश में, एंड अक्रॉस पार्टी लाइन्स वहां पे स्पीकर्स भी थे, अक्रॉस जेंडर्स वहां स्पीकर्स थे, और सबने आकर कहीं ना कहीं हमारी महिलाओं को या तो ये बताने की कोशिश की, लड़कियों को, महिलाओं के लिए, कि आप तैयार हो, ये होने वाला है। एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी अगेन वेरी लो एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी जनरली, राइट, कि आप राजनीति में जाएंगे तो आपके साथ ये होगा। पहली बात तो हमें ये चेंज करना है कि ये नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी नॉर्मलाइज। दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम एक ट्रिक देखते हैं, वो देखते हैं कि एक महिला बींग पिटेड अगेंस्ट ए महिला, ये भी पूरी पेट्रियार्की की जो हम बोलते हैं ना पितृसत्तात्मकता की जो एक पूरी सिस्टम है उसका एक बहुत बड़ा टूल है, महिला अगेंस्ट महिला। मैं इस सुर्खियों में एक्चुअली अपडेट भी जोड़ना चाहती हूँ कि सुप्रिया श्रेनेत का नाम कांग्रेस पार्टी ने अपनी लोकसभा कैंडिडेट्स की लिस्ट में से ड्रॉप कर दिया। आठ लिस्टें जारी हुई हैं, उनने महाराजगंज से पिछली बार चुनाव लड़ा था, नहीं जीती थी, उम्मीद शायद कर रही थी क्योंकि अभी तो वैसे भी कांग्रेस पार्टी के पास खिलाड़ी कम है, कैंडिडेट्स कम है, तो किन को दें। और सुप्रिया जी तो सुप्रिया जी का नाम ड्रॉप कर दिया है, अब वो हो सकता है उसकी कोई और पॉलिटिकल वजह भी हो, पर हम ये देख रहे हैं कि इमीडिएट पेनलाइजेशन ऑफ अ वुमन फॉर doing this within coming from a very patriarchal party, again like I'm saying that all parties are patriarchal, right? जैसा कि मनीषा ने कहा, पूरी 100% सहमति रखते हुए कि पहली बात तो ये इतना लो हैंगिंग फ्रूट है कि महिलाओं के लिए आप सबसे पहले टारगेट यही करते हैं, दूसरी बात आप सोशल मीडिया के हेड होकर एक नेशनल पार्टी के, आपने गलती मानी, वेरी गुड, पर द फैक्ट दैट इतनी बड़ी गलती हो सकती है, आपका आपके अकाउंट्स इतने कॉम्प्रोमाइजेबल है, आज ये हो सकता है कल को कुछ और भी हो सकता है, राइट? तो आप और सोशल मीडिया के हेड, आप ये भी नहीं बोल सकते कि आपको समझ नहीं है कि ये कैसे हो गया। थर्ड इसमें प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी भी है, जहां पे लोग बोल रहे हैं कि आपने डाला तो जानबूझ के ही था, वो तो आप मतलब लोगों ने तुरंत बैकलैश कर दिया इसलिए आपने ये बोल दिया कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था। और ये टेक्नोलॉजी के जमाने में डीप फेक पे भी हमने बहुत बात करी कि ये होगा, लोग शायद कुछ बोल जाएंगे और फिर बाद में बोलेंगे अरे वो तो मेरा डीप फेक फेक वीडियो सर्कुलेट हो गया, राइट। इसकी ऑथेंटिसिटी फिर ये प्लेटफॉर्म्स को देने की भी जरूरत है कि वॉस द अकाउंट हैक एट द सेट टाइम, बिकॉज ये बात ये जानकारी आप बहुत आराम से टेक प्लेटफॉर्म्स के थ्रू निकाल सकते हैं, बट हम देखते हैं कि टेक प्लेटफॉर्म्स भी इलेक्शंस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये इशू बहुत मुद्दों पर है, ये सोसाइटी पर है, ये लीडर्स पर खुद पर है, ये पेट्रियार्की का भी मुद्दा और ये टेक अकाउंटेबिलिटी का भी मुद्दा बन गया।
ये जो एक बड़ा
ये एक सेंटेंस जो परकटी महिला जो बोला था वो मायावती के
महिला बिल के बारे में,
जब जब पहली बार यूपी के टाइम पे वुमेन बिल आया था तब बोला था।
अच्छा,
तो ये लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है हृदेश और आनंद कि जो इन्होंने कहा कि टेक प्लेटफॉर्म्स जो है बहुत आसानी से कुछ चीजों को बता सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि पहले इस तरह की चीजें हो जाती हैं, इसके बाद नेता बहुत खुले तरीके से आएंगे और कहेंगे कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था, कोई से कोई और
इस केस में मेरा जन की टीम में उन्होंने बोला कि मेरी टीम के किसी मेंबर
ने, सिर्फ नेता ने नहीं, ऑल्ट न्यूज के एक फैक्ट चेकर ने 4-5 साल पहले फेसबुक पे ईवीएम ट्रांसपोर्टेशन का एक वीडियो आया था और वो फेक था।
अच्छा।
वीडियो फेक था और वो 2-3 दिन बाद आकर बोले कि मैंने नहीं डाला था, मेरा फेसबुक अकाउंट कॉम्प्रोमाइज था, कोई और हैक कर दिया था। तुम नेताओं का तो छोड़िए, जो फैक्ट चेकर्स हैं वो भी ये बोल रहे हैं, और अभी नहीं, डीप फेक के समय नहीं, आज से 4-5 साल पहले।
अच्छा, एक चीज इसमें है, मैं इससे बिल्कुल अलग है, इसे मिक्स करके सुनेंगे तो गलत बात हो जाएगी, ये महिलाओं के साथ जो अभद्रता है ये तो बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन सोशल मीडिया पे कोई गलत चीज जाना, दो चीज हो सकती है, एक तो गलती से हुआ एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है, या मतलब आपको पता नहीं था गलत है, आपने तुरंत हटा लिया, वो महिलाओं के बारे में लागू नहीं करा, उसमें तो कोई माफी नहीं है, होना ही नहीं चाहिए, लेकिन कुछ और चीजें जैसे कहीं तो वो आती है, तो वो तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन अभी जो इस तरह का एक पूरा अनलीश हुई है सोशल मीडिया की पावर, जिसके बारे में हमारी गेस्ट जो है कांक्षी बता भी रही थी, उसमें ये भी है कि आप आदमी को 10 काम दिए हुए हैं और उसने 10 जगह अपना अकाउंट दिया हुआ है, तो आपको ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, राइट।
और आपकी टीम और आप
ये बहानेबाजी, चाहे श्रीनेत करें चाहे मृणाल पांडे करें, ये चलती नहीं है कि भैया मैंने तो ऐसा कहा था, मैंने वैसा कहा था, मेरी ओर ने कर दिया। दूसरा, महिलाओं के लिए दिक्कत सिर्फ ये नहीं है कि उनको तब टारगेट किया जाता है जब वो खुद खड़ी होती है, महिलाओं को तब भी टारगेट किया जाता है जब उनके परिवार का कोई पुरुष खड़ा होता है तो उसके बहाने, जैसे अखिलेश यादव की जो पत्नी है उनके ऊपर कई बार ऐसे अटैक हुए हैं और बहुत अभद्र अटैक हुए हैं, जबकि उनका कोई लेना देना उस चुनाव में नहीं भी रहा, वो भी
मतलब आदमियों के हिस्से
एक जमाने को
भी साधन के लिए महिलाओं को ही नहीं
चाहिए। कबीलाई संस्कृति जो हुआ करती थी, जिसमें मैं कई बार पहले भी यहाँ कह चुका हूँ, जहाँ एक आदमी के अपराध की सजा देने के लिए उसके परिवार की महिलाओं के साथ, इवन प्यूनिटिव रेप की तक बात होती थी कि उनके परिवार के साथ, तुमने हमारे परिवार के साथ किया तो हम भी तुम्हारे परिवार के साथ करेंगे, तो मतलब किसी महिला के साथ अगर आपने किया है तो उसके दूसरे परिवार की महिला के साथ हम उस सजा को उसी तरह का व्यवहार करके लेंगे। तो ये बहुत गहरी संस्कृति जो एक कहते हैं कुसंस्कृति जो है वो है
इस,
और दूसरी बात एक आखिर में मैं कहना चाहूंगा कि अब वो दुनिया में, इस दुनिया में नहीं है, एक बड़ी नेता, उन्होंने सोनिया गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने के वक्त ये कहा था कि भैया मैं जो है अपने बाल कटवा लूंगी,
सुषमा स्वराज जी की बात हो रही है,
हाँ मतलब मैं इसलिए नाम नहीं रहता कि अब वो है नहीं, ठीक है, लेकिन ये सब तथ्य है। तो अब ये भी एक घृणा दिखाता है ना, एक और हम यही महिलाएं एक साथ भी होती थी, ऐसा नहीं है, ये सारी महिलाएं सारी पार्टी की कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन एक साथ आती थी महिला बिल के बारे में, जो बहुत खूबसूरत बात थी, लेकिन ये भी दिखाता है उसके बाद कि उस
लेकिन मेरे ख्याल से सुषमा स्वराज का ऑपोजिशन इसलिए था कि वो इटालियन है, ना कि वो महिला है, मतलब ज्यादा
क्योंकि
विदेशी
हमारा
वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन
पर हाँ, एक महिला को के को ही टारगेट कर रही
थी, वल्नरेबिलिटी जो है वो उस हिसाब से भी उसको देखा जाना चाहिए। हाँ,
यूजुअली ये जो मैं अपनी विमेन पिटिंग अगेंस्ट वाली बात पे इसलिए वापस आ रही थी क्योंकि आजकल ऐसा भी हम देखने लगे हैं, अरे वहां से महिला बोल रही है तो पार्टी से महिलाओं को आप जाके काउंटर करिए, अगर महिला बोलेगी, अगर हम ऐसा पुरुष जाके एक औरत को काउंटर करेंगे तो तुरंत लोग बोलने लगेंगे अरे आगे पुरुष अटैक करने, पर ये लोग तो मैं फिर से वही वाली बात पे आती हूँ, मर्द औरत पितृसत्ता और फेमिनिस्ट, ये 4 अलग-अलग शब्द हैं, कोई भी कुछ भी, मतलब महिला भी पेट्रियार्कल हो सकती है, पुरुष भी अलाय हो सकता है, पुरुष भी जेंडर इक्वालिटी की ज्यादा सेंसिटिवली बात कर सकता है, पर हम जब देखते हैं कि ये जो पिटिंग इजी हो जाती है कि अरे आप भी महिला हैं, आप बोलेंगी तो दूसरा भी आपको कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, और ये नहीं कह पाएंगे कि महिला को तो पुरुष ने बहुत अभद्र बातें बोल दी, तो आपस में भिड़ा देने की वो जो तरीका है वो शायद उस टाइम पे डेफिनेटली सुषमा जी ने उनके जेंडर पे नहीं, उनके आइडेंटिटी पे अटैक किया था, नेशनैलिटी पे, पर वो इजी था, एक महिला जाकर बोलेंगी इमोशनल सेंस
में, अगर महिला बोले कि मैं अपने बाल मुड़वा दूंगी,
राइट,
हां यस,
ठीक है, आप कुछ कह रहे थे?
देखिए पितृसत्ता जो है, जो पैट्रियार्की है, उसको बड़े कॉजेस को एड्रेस करना है, इसलिए जो चुनावी बयानबाजी में रिटेल में हर अगर पितृसत्ता सब कुछ पितृसत्ता है तो फिर पितृसत्ता कुछ नहीं है, इसलिए जो रिटेल यूज है पितृसत्ता का वो नहीं देख के, जो स्पेसिफिक यहाँ जो राजनीतिक संदर्भ इसका क्या है, मेरे ख्याल से इसमें एक संदर्भ है कि एक क्विड प्रो दिखाना कि ये जो है टिकट इनको क्यों मिला, तो उनकी राजनीतिक पात्रता को क्वेश्चन करना कि ये पॉलिटिकली एलिजिबल नहीं है, इसको एक क्विड प्रो को कुछ दूसरे कारणों से मिला, मंडी का जो है, और ऐसे भी जो पन है लोएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमर है, तो अगर ह्यूमरस भी होना चाह रहे थे तो बहुत हुई नहीं, तो और मृणाल पांडे का भी जो है, मृणाल पांडे एक दूसरे चीज से ग्रसित है मेरे ख्याल से, एक
दूसरी चीज से ग्रसित,
हाँ, किस चीज से, वही
तो वो एक है ना कि वो पहले छपास की बीमारी रहती थी, अब जो है ट्विटास की बीमारी, तो ये क्या है ना कि जैसे किसी को रिडिक्यूल करना तो एक फर्स्ट रिफ्लेक्स एक्शन है, और इसीलिए मैं ज्यादा राजनीतिक दर्शन में नहीं जाना चाहता, लेकिन थॉमस हॉब्स ने कहा था कि इससे हम अच्छा फील करते हैं इसलिए हम उपहास करते हैं, मॉक करना किसी को, रिडिक्यूल करना, तो इससे एक्चुअली ये बहुत ही स्वार्थी बिहेवियर है। हॉब्स ने लेवियथन में, अगर आप लेवियथन पढ़ेंगे तो उसने मतलब पॉलिटिकल फिलॉसफी पे आने से पहले बोला कि लोग मॉकरी क्यों करते हैं, सटायर क्यों करते हैं, तो इससे हम अच्छा फील करते हैं, तो पहले ही अब कुछ राजनीतिक आर्गुमेंट होना ही नहीं है, तुम मूर्ख हो, तुम मंडी के लोग हो, तुम ये हो, अब आर्गुमेंट के लिए बचा क्या?
आनंद ने एकदम इशारे इशारे में हम लोगों के शो की धज्जी उड़ा दी कि तुम लोग ह्यूमर करते हो,
नहीं नहीं नहीं, मतलब लेबलिंग जो है ना ये लेबलिंग का, जैसे कि भाई तुम टेररिस्ट हो, तुम लेफ्टिस्ट हो, तुम राइटिस्ट हो, पहले लेबल ही कर दो, फिर आर्गुमेंट के लिए बचा ही क्या, तो पहले लेबलिंग पहले हो जाए, कि राजनीतिक पात्रता आपकी है ही नहीं, आपको लड़ना ही नहीं चाहिए था चुनाव।
एक तो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद आ रही है,
उन्होंने उर्मिला के बारे में
नहीं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आ रही है इससे, जो कहा कि एक तो अंग्रेजी में कहावत भी होती है, जोक इज अ वेरी सीरियस थिंग, मतलब अगर आप जोक भी करना चाहते हैं ना तो आपको याद रखना चाहिए बहुत गंभीर चीज है, उसको करने के लिए आप मतलब ऐसे ही जैसे आनंद ने कहा कि आप पहले कुछ भी करके नहीं निकल सकते। हाँ, हाँ, दूसरी चीज ये है कि इसने एक बहुत बड़े बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कोर्स की जगह को खत्म कर दिया ऐसे माहौल ने, जैसे अगर खिलाड़ी और अगर अभिनेत्री, अभिनेता और अभिनेत्रियां पार्लियामेंट के लिए चुनी जाती हैं और उसके बाद सीरियसली काम नहीं करती, तो उनके चुनाव और टिकट दिए जाने के वक्त में हम सवाल उठा सकते थे कि ऐसे लोग पार्लियामेंट में आने चाहिए जो सीरियस हों, क्वेश्चन करें, किसी इशू पे काम करें,
पिछली बार की लोकसभा स्टार कैंडिडेट्स,
लेकिन अब आप वो सवाल भी नहीं पूछ सकते क्योंकि आपने इतना हल्का बना दिया माहौल को, आप ये नहीं कह सकते हो कि कांग्रेस की या बीजेपी की एक उम्मीदवार अभिनेत्री या खिलाड़ी क्यों है जब ये पार्लियामेंट में आते ही नहीं है ऐसे लोग, क्योंकि आप कहोगे तो फिर आप पे आरो, तो जब हम इस तरह का हल्का माहौल बनाते हैं ना एक बहुत सीरियस पब्लिक ओरिएंटेड डिस्कोर्स को भी बहुत जगह, हाँ, श्रिंक कर देते हैं, उसके लिए जगह नहीं छोड़ते।
ठीक बात, कांक्षी आपको इसमें कुछ जोड़ना है? मेरा इससे जुड़ा एक और सवाल है, वो है पॉलिटिकल क्लास की अपनी जो हिपोक्रेसी है, क्योंकि ये चीज जो है हम बार बार देखते हैं चुनावों के मौसम में, इसका वो बढ़ जाता है, इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, लेकिन आमतौर पर अगर हम देखें, मुझे याद है आप देखिए टॉप से ही अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिलाओं के से संबंधित बयान, ऐसे ऐसे बयान हैं आमतौर पर घूमते रहते हैं सोशल मीडिया में बार बार समय समय पर, वो खुद भी इसी तरह की बयानबाजियां समय समय पर करते रहे,
75 करोड़ की
पचहत्तर 35 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, और ये क्या दीदी ओ दीदी जो पूरा बंगाल चुनाव के टाइम का है, या फिर सोनिया गांधी को लेकर वो क्या वो पैसा कहाँ से आया था, मामा के घर से आया था, या ऐसी तमाम चीजें वो महिलाओं को लेकर वो भी या जर्सी गाय जैसी उपाधि देना एक महिला, कहने का मतलब एक तो ये प्रधानमंत्री पर और भी तमाम लीडर हैं जो कि इस तरह की चीजें लगातार करते रहते हैं और उसमें चुनाव आयोग कोई डिटरेंस बनकर नहीं दिखता। बार बार वो आता है फिर नोटिस भेज दिया जाता है और फिर चुनाव इस प्रक्रिया में खत्म हो जाता है और फिर क्लीन चिट भी मिल जाती है। तो ये जो हिपोक्रेसी है ना कि पॉलिटिकल क्लास अपने नेता के साथ कुछ हुआ तो सबके सब होलीकाऊ बन जाते हैं, इधर बीजेपी वाले अब होलीकाऊ बन जाएंगे, फिर बाद में कांग्रेस वाले बन जाएंगे, इससे कोई चीज असल में हल नहीं होती इस हिपोक्रेसी से।
मजबूत हुआ करता था, सो कॉल्ड मजबूत था जिस समय कहा था बड़ी गरिमा है उनकी, उस समय भी चुनाव आयोग के जो लीगल एडवाइजर, और मैं उनका नाम लेके बोल सकता हूँ क्योंकि बात उन्होंने रिकॉर्ड पे कही है, एसके मेंडिरत्ता साहब, बेहतरीन, सबसे बेहतरीन आदमी। आप लोगों को तो केवल चेहरे दिखते हैं ना जो लोग कवर करते हैं और डील करते हैं, केजे राव के अलावा एसके मेंडिरत्ता हुआ करते थे। तो उन्होंने कई बार मुझे बताया कि निर्देश ऐसा है कि लॉ में हमारे लिए इतने कंस्ट्रेंट है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमको एक नोटिस देना है, नोटिस के जवाब का इंतजार करना है, कई बार लोग इंतजार के लिए जवाब के लिए और वक्त मांगते हैं। तो पहले ही प्रॉब्लम इतनी थी, अब अगर चुनाव आयोग की खुद अपनी ताकत को डाइल्यूट कर रहा है और सख्ती नहीं दिखाता या बैन नहीं करता कि आपने इस तरह का बयान दिया है आप अगले 3 हफ्ते तक चुनावी रैली नहीं कर सकते, तो कोई डर होगा लोगों में कि भैया ये हमारा स्टार कैंपेनर है, इसके बोलने पर रोक लग सकती है। लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशन की ओर से आनी चाहिए आवाज, इंस्टीट्यूशन के अपने कंस्ट्रेंट जो है उसके बावजूद कई बार उसने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये एक बात जो आप
इसके बारे में मैंने पिछले सप्ताह लिखा भी था कि एमसीसी के, और ये चुनावी सीजन में मेरे ख्याल से श्रोताओं के लिए उपयोगी होगा कि एमसीसी के कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हैं, और कुछ कंस्ट्रेंट चुनाव आयोग ने खुद अपने पर लगाए हैं कि एमसीसी जब 60 में आया, जो पहले केरल से आया था, बाद में चुनाव आयोग ने उसे एडॉप्ट किया और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आचार चुनाव संहिता है, तो आदर्श, तो उसमें पहली चीज है, एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी चाहिए कि उसमें लीगल तिथ नहीं है। लीगल तिथ नहीं है तो फिर अब जैसे कि इन सब केसेस में भी समाचार पत्रों में पढ़िएगा कि लीगल तिथ नहीं है तो कैसे चुनाव आयोग, तो अब जैसे कर्नाटक में एक बीजेपी नेता ने जो बयान दिया था तमिल के खिलाफ, तो उसमें जो है आईपीसी और सीआरपीसी के ही एक्ट लगते हैं, एमसीसी अपने आप में कुछ ऐसा लेजिस्लेशन नहीं। और दूसरी बात है कि एक बड़ा कदम जो है चुनाव आयोग नहीं उठाती है, उसके दो कारण उन्होंने दिए हैं। पहला कि इससे मान लीजिए कि कोई बड़ा उम्मीदवार या कोई बड़ी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा या कोई रीजनल पार्टी भी, डीएमके वगैरह डीरजिस्टर कर दें, तो वो जो है उससे क्या है, पहली बात है कि चुनावी जो है एक बड़ा स्टेक होल्डर हट गया, दूसरी बात है कि ये लिटिगेशन इतना लंबा है कि जो इलेक्शन कैलेंडर है वो फॉलो नहीं हो सकता, कोर्ट जाएगा, जैसे ही आप लॉ बनाए तो दूसरी पार्टी को भी तो हियर होने का अधिकार है, तो वो कोर्ट जाएगा, लिटिगेशन होगा, तो चुनाव जो 45 दिन में करवा देना है, 60 दिन में करवा देना, वो तो नहीं होगा, तो चुनावी कैलेंडर उससे नहीं हो सकता है। इसीलिए एक 2013 में जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, उसने सिफारिश की थी कि इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है 1951 का पार्ट बना दीजिए, तो इलेक्शन कमीशन हर कंप्लेन पर केस दर्ज कर सकती है। लेकिन चुनाव आयोग इस पे खुश होना चाहिए, लेकिन उसने कहा कि नहीं,
हम तो उस लीगल पिछड़े में नहीं पड़ना चाहते।
मैंने पिछले कुछ समय से फॉलो नहीं किया, परंतु जब तक का मुझे याद है डीरजिस्टर करने की पावर तक इलेक्शन कमीशन के पास नहीं थी। अब दी गई हो तो मुझे पता नहीं,
वो बता देता हूँ, वो दूसरे एक्ट से है, इलेक्शन सिंबल एक्ट 1968 के तहत उसको डीरजिस्टर करने का है, लेकिन वो नहीं करती है, जो मैंने पहला कारण बताया कि अगर मेजर स्टेक होल्डर हटा दें, मान लीजिए कि आज आपने कांग्रेस को हटा दिया, भाजपा को हटा दिया, तो वो फिर चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाता है। दूसरी बात है कि जो मैंने एक बहुत प्रैक्टिकल कारण इलेक्शन कमीशन ने दिया कि ये फिर कोर्ट जाएंगे तो चुनाव क्या होगा, फिर हम केस ही लड़ते रहे।
एक नियम और है इसमें, लेयर एक और ये है कि जब तक इलेक्शन प्रोसेस चल रही है कोर्ट का कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं है, और वो सही नियम है क्योंकि अगर कोर्ट भी आ गया बीच में तो चुनाव आयोग और कोर्ट ही आपस में लड़ते हैं, तो जब तक इलेक्शन, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आफ्टर द इलेक्शंस आर ओवर यू कैन गो टू,
उसके बाद आप कोर्ट में जाएंगे। कांक्षी आपको इसमें कुछ जोड़ना है?
राइट, राइट आई एम गोइंग टू बिल्ड ऑन आप जो यहाँ पे हम पिछली बात कर रहे थे वही डिस्कॉर्स की बात थी कि अगर गोविंदा जी भी चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे यहाँ ऐसे कई बार राजनेता क्रिकेटर्स चुनाव लड़ते हैं बट इस बात को मैं इससे जोड़ना चाहती हूँ मतलब जो आपने सवाल पूछा राइट कि ये अक्रॉस द ईयर चलता है अलग अलग प्लेटफॉर्म से चलता है प्राइम मिनिस्टर जो बोल रहे हैं पर अभी जैसे पार्लियामेंट में कुछ हुआ था तो स्मृति ईरानी जी ने कहा था कि राहुल जी का पार्लियामेंट में फ्लाइंग किस देना इज मिसोजिनिस्टिक एंड सेक्सिस्ट एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं होना कि क्या मिसोजिनी है और एक जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज का यूज ना होना पूरे चुनाव में हम यही बात पर अग्री नहीं कर सकते हैं कि अरे ये तो मैंने मजाक में कहा था मजाक ऑफ कोर्स यू कांट हैव पंस लाइक दिस बट क्या सेक्सिज्म है क्या मिसोजिनी है क्या मिसोजिनी नहीं है क्या किस इंटेंशन से किया गया है और किसका क्या इम्पैक्ट है अल्टीमेटली फॉर अ पॉलिटिशियन और मैं आनंद जी की बात को लेकर आती हूँ कि इफ एवरीथिंग इज पेट्रियार्की नथिंग इज पेट्रियार्की आई सॉर्ट ऑफ डिसएग्री बिकॉज ऐसे ही मिसोजिनी में भी यही हो रहा है अभी कि हम लोग क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली मिसोजिनी कैसे कॉल आउट करनी है इसलिए हम किसी भी बात पर भिड़ जाते हैं क्या किसको कोर्ट ले जाना चाहिए और वहां पे भी जजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मिसोजिनी सेक्सिज्म को कैसे इंटरप्रेट करेंगे इट इज आल्सो गोइंग टू बी अ वेरी ह्यूमन इंटरवेंशन प्रक्रिया राइट कि वो जज का पैनल क्या सोचता है वो जजेस का पैनल क्या सोचता है कि ये सर्टेन रिमार्क किस इंटेंशन से कहा गया वर्सेस नहीं कहा गया और ऐसी बातों को लेकर अगर हमारे पास एक जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज हो चाहे वो इलेक्शन के प्रचार में हो चाहे इलेक्शन को रिपोर्ट करते समय हो तो मृणाल पांडे जी से लेकर सुप्रिया श्रेनेट तक से लेकर राहुल गांधी से लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी तक कौन सी बातें हैं जो उनको औरतों के स्टीरियोटाइपिंग सेक्सिज्म मिसोजिनी और ये सब डिफरेंट लेवल्स हैं डेरोगेशन का एक लेवल है वर्सेस एक कैजुअल सेक्सिज्म का लेवल है एक कैजुअल स्टीरियोटाइपिंग का लेवल है हमको इस सबकी सेग्रीगेशन की भी जानकारी होनी चाहिए और इम्पैक्ट इसका क्या होता है आफ्टर ऑल फॉर अ पॉलिटिशियन व्हाट मैटर्स कि उसके अगेंस्ट नैरेटिव जा रहा है उसके फॉर नैरेटिव जा रहा है और क्या वो वोटर को अपनी अपनी सिंपथी से कनेक्ट कर सकता है अल्टीमेटली इट्स अ कट थ्रोट गेम ऑफ विनिंग इलेक्शन व्हाट वी हैव बीन टोल्ड राइट नाउ कि आपको अल्टीमेटली चुनाव जीतना है और बहुत सारी महिलाओं के साथ अभी एमएलए एक कैंडिडेट हैं राजस्थान एमएलए हैं या कैंडिडेट थी उनका डीप फेक वीडियो चल गया हमारी समझ से हमको ये मालूम है कि बहुत सारा औरतों का टाइम अब इसमें जाने लगा है टाइम रिसोर्स मनी कि यार वो सर्कुलेशन बंद करवाओ वो वायरल वीडियो चल रहा है मेरा कैंपेन मैं बाद में देखूंगी कि आज मेरा क्या क्या रूट था और मुझे कहाँ कहाँ जाना था पर अभी ये बंद करवाओ अभी अगर कंगना का भी अगर आप देखें उनका कैंपेन क्या चल रहा है वो बैठ के इसी बात को डिफेंड कर रही है टाइम समिट में जाके अपनी वो क्या काम कर सकती है लोग उनसे क्या पूछ सकते हैं कि अगर आप एमपी कैंडिडेट हैं तो आप क्या काम करेंगी लोग ये पूछ लेंगे आपके बारे में जो टिप्पणी हो गई इसका क्या कहना है आपने डिस्कोर्स को एग्जैक्टली इतना निचला बना दिया है और वही उसी उन्हीं मुद्दों में जो मतलब खोल तोड़ दिया है कि अब आप उन कैंडिडेट्स को कैंडिडेट्स की तरह नहीं एक औरत की तरह देखकर उनके डेरोगेशन पर चले गए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और जो चुनावी बातों पे जो ईसीआई पे हम बोल रहे थे इट्स अ टूथलेस एलिफेंट जहां पे उनके पास कोई
मतलब इलेक्शन कमीशन या इंस्टीट्यूशन की तरफ जो हिरदेश ने बात की उससे मैं इत्तेफाक रखता हूं
कि एक बात मैं कहना चाहूं इलेक्शन कमीशन की जो बात हमने की टूथलेस टाइगर वो है नियमों के आधार पर लेकिन अगेन अगर जो अधिकारी जैसे
व्यक्ति कैसा
व्यक्ति है जो वहां पर खड़े हैं जो पीठासीन अधिकारी है वो कैसे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है मैं इसी इलेक्शन को कवर करते हुए 2005 के चुनाव में आनंद मैंने जो देखा 2005 में के नहीं केजे राव तो ऊपर थे लेकिन 2005 के इलेक्शन में दो अधिकारी थे सीके अनिल और रतन संजय ये सिवान का इलेक्शन करवा रहे थे और मैं वहां पर था उन्होंने उस चुनाव में मनीषा मैंने ये रिपोर्ट की थी कि 55-60 साल के लोगों ने बाहर आके कहा हमने जिंदगी में पहली बार वोट डाला मतलब इतना बुरा हाल वहां पर
जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो एक चुनाव अगर चाहे तो चुनाव का नक्शा बदल सकता है अगर वो बहुत स्ट्रिक्ट हो
मतलब
तो
लेकिन लेकिन क्यों प्राइम मिनिस्टर को मतलब ये तो
जैसे आर्टिकल 324 तो इलेक्शन कमीशन को बहुत पावर देता है लेकिन खासकर ये जो भाषणबाजी बयानबाजी में ये थोड़ा टूथलेस हो जाता है जिसके प्रैक्टिकल कारण मैंने बताया दूसरी बात मैं एक बता रहा था कि इन लोग, ये जो लोग बयान दे रहे हैं, ये लोग जो ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, उनको ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि कोर्ट में अगर आप स्पीच दे रहे हैं किसी रैली में तो उस पर कोर्ट ज्यादा लिबरल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये रहा है कि 1960 में एक फेमस केस है मुख्तियार सिंह वर्सेस कुलतार सिंह, कि हीट ऑफ द इलेक्शन में जो दिया जा रहा है उसमें थोड़ी, चलो भाई थोड़ी छूट है, मतलब ये नहीं कि गाली गलौज करने लगे, लेकिन फिर भी चलो माना जा सकता है कि एक पैशन में कुछ बोल दिया, लेकिन ये ट्वीट जो है वो तो घर बैठ के आप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये डिस्कोर्स में आया था राहुल गांधी वाला डिस्क्वालिफिकेशन मैटर पे, जो उन्हें वो क्या मोदी वाले क्या
चोर,
तो उस समय के आप न्यूज़पेपर्स में कमेंट्री देखिए तो उस केस का जिक्र किया गया था कि वो भी जो है हीट ऑफ द मोमेंट में बोला गया था।
हाँ, नहीं, हिपोक्रेसी वाली बात ये बार बार, मुझे ख्याल से लीगल पहलू भी आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। जो हिपोक्रेसी वाली बात पे दो लोगों का नाम बार बार आ रहा है, एक तो राहुल गांधी का नाम आया कि किस तरह से, और दूसरा स्मृति ईरानी का नाम बार बार आ रहा है। स्मृति ईरानी वाले मामले में आप ये देखिए कि फ्लाइंग किस वाला जो मामला था,
पर वो थी नहीं,
वो एक तो फ्लाइंग किस थी नहीं, वो एस्टैब्लिश नहीं हुई थी भी, तो हाँ,
उनको देख के तो नहीं उनको, ही कर रहे थे।
अब उस पर लेकिन जिस तरह से खड़ा किया गया, तो कई बार वो जो बात एकदम शुरू में हुई कि परसेप्शन क्या बनाया जा रहा है, तो परसेप्शन बनाने के लिए पार्लियामेंट का इस्तेमाल उस दिन किया गया जिस तरह से, और उसको स्मृति ईरानी लीड कर रही थी, माफी मांगो राहुल गांधी, माफी मांगो सोनिया गांधी, माफी मांगो, चिल्ला चिल्ला कर, गला फाड़ फाड़ कर। और उसी उसके टाइम के आसपास में जंतर मंतर हो रहा था, जिसमें देश की बड़ी एथलीट सेक्सुअल असॉल्ट के आरोप लगाकर एक नेता, एक मंत्री के ऊपर और वहां पे एमपी के ऊपर बैठी हुई थी, मणिपुर की घटनाएं थी। इन नेताओं की के कोई स्टेटमेंट नहीं है, स्मृति ईरानी का कोई स्टेटमेंट, कोई बयान नहीं आता है। इसी तरह से वुमेन्स कमीशन है इस देश का, पर महिला आयोग है, उसकी कार्रवाइयां इतनी सिलेक्टिव हैं कि वो भाजपा के जो स्टेट्स हैं, रूलिंग स्टेट है, वहां पर अलग तरह से व्यवहार करती है, और बाकी जो नॉन बीजेपी रूल स्टेट है वहां अलग तरह से व्यवहार। खासकर मणिपुर वाले मामले में अगर आपको पता हो तो इस घटना की जानकारी होते हुए, बाकायदा शिकायत होते हुए, सारी उनके पास रिपोर्ट होते हुए भी महिला आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये जो चीज है, वो जो पाखंड है या हिपोक्रेसी है, वो इतना ज्यादा वो कर जाता है कि कई बार बहुत जेन्युइन मसलों पर आप केवल अपने पॉलिटिकल हितों के हिसाब से ही बात करते हैं, सही बात और रीजनेबल बात कर ही नहीं पाते।
इसी केस में भी नीतीश कुमार का भी तो हुआ था, जो
हाँ
सेक्स एजुकेशन, उनके अकॉर्डिंगली वो सेक्स एजुकेशन का टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन उसपे जब वो बीजेपी में नहीं थे, सारे भाजपा, सारे बीजेपी वाले मीडिया टपक पड़ी कि भाई ये सेक्सिस्ट है, सेक्सिस्ट रिमार्क है।
एक इसमें चूंकि पत्रकारिता से जुड़ा है, एक मृणाल पांडे सधी हुई भाषा लिखती थी, एक बहुत अच्छा लेखन भी उन्होंने किया है, एक पूरी पीढ़ी जो है उनको पढ़ी है। और तो मेरे ख्याल से एक मैं एनालॉजी दे रहा हूँ कि ये लोग गलती क्या करते हैं। जैसे विराट कोहली ने, मैं एक क्रिकेट के फील्ड से दे रहा हूँ, विराट कोहली ने कहा था एक बार कि मैं जो है T20 मैचों में ऐसे स्ट्रोक्स नहीं खेलता जो मैं टेस्ट मैच में नहीं खेलता। तो जो आप जब लंबा लिखते हैं तो जिस तरह की बातें नहीं लिखते हैं, वैसे ही छोटी चीज़ों में भी नहीं लिखिए, जैसे कि इतने कैरेक्टर्स के ट्वीट। लॉन्ग फॉर्म में आप जो डिसिप्लिन रखते हैं और जो आर्गुमेंट रीजनिंग या जो शैली स्टाइल की, वो डिसिप्लिन आप ट्वीट्स में भी रखिए। वो डिसिप्लिन हो सके वो दूसरे तरह का व्यंग्य करना चाहती हूँ, कुछ और हो गया हो, तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं उस पीढ़ी से हूँ, आज का जनरेशन पता नहीं उनको क्षमा करेगा या नहीं।
जैसे जो आप लेकिन क्रिकेट की भाषा में सुनील गावस्कर कहते हैं ना, T20 में यू टेंड टू फॉल इन बैड हैबिट्स, मतलब आपकी आदतें खराब हो सकती
हैं। पर ये ट्विटर का प्रॉब्लम है, मुझे लगता है जर्नलिस्ट को करके, वही मैं कह रही हूं, मतलब जर्नलिस्ट को थोड़ा ट्विटर से दूर ही रहना।
बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारी बातें आप लोग यहां पर कर रहे हैं मैं देख रहा हूं, लेकिन सवाल नहीं है किसी के, तो कुछ सवाल अगर हो तो वो जरूर पूछें। यहाँ पर जो पैनल मौजूद है और ऑनलाइन हमारे साथ कांखी जुड़ी हैं, उनसे कोई सवाल हो, आनंद से, हृदेश से, मनीषा से, वो सवाल जरूर पूछे ताकि हम उसको शामिल कर सकें। आप लोगों की टिप्पणियां यहाँ पर बहुत सारी हैं, तो
एक बात मैं कह सकता हूँ जी, ये आनंद ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद दिलाई,
आप दो बात कही
कि जब जब मनीषा आदमी लिखता है तो वो किस तरह की जॉनरा में लिख रहा है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि उस पर डिपेंड बहुत कुछ करता है कि वो कितना ओपिनियनेटेड होगा। रामचंद्र गुहा ने एक बार कहा था कि जब मैं ट्वीट लिखता हूं तो मैं सबसे ज्यादा ओपिनियनेटेड होता हूं, जब मैं आर्टिकल लिखता हूं तो उस वक्त थोड़ा कम ओपिनियनेटेड होता हूं, लेकिन जब मैं एक बुक लिखता हूं तो उस वक्त मैं बिल्कुल फैक्ट्स पे ध्यान देता हूं, ओपिनियन नहीं होता। ये मैं सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहा हूं। तो ये जो लॉन्ग फॉर्म की इन्होंने बात कही, मोर क्लासिक राइटिंग, मोर क्लासिक स्पीच, मोर क्लासिक जॉनरा ऑफ यू नो एनीथिंग व्हेन यू प्रोड्यूस समथिंग, तो उस वक्त आपका ओपिनियन बैक स्टेज बैक बर्नर पे रहता है और आप फैक्ट्स की बात ज्यादा करते हैं, तो वो चीज जो है समस्या यहाँ एक।
फ्रेडरिक डिमेलो हैं, इस पर तो हमने काफी विस्तार से बात कर ली, आगे दूसरे विषय पर बढ़ने का मौका है। उनका एक सवाल है कि जो मुख्तार अंसारी की मौत हुई है उस पर पैनल क्या सोचता है।
तो आप पैनल के आते हैं, आप आते हैं
क्षेत्र से आते हैं,
आनंद आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं थोड़ा सा थोड़ा बहुत जानता हूँ, जैसे ये तो ऐसा कहा जा रहा है जैसे मेरा मतलब मुख्तार अंसारी के साथ उठना बैठना रहा हो। नहीं, हालांकि मेरे गृह जिले के आसपास के थे, गाजीपुर के थे वो, तो उनको लेकर मतलब दो तरह की बहुत साफ साफ छवियां हैं, और एक छवि वो है जिसमें वो एक गैंगस्टर है, एक माफिया थे, और पूरा ईस्टर्न यूपी, एक बड़ा हिस्सा आप कहें बिहार का भी, इस बीमारी की चपेट में लंबे समय तक रहा है। और मुख्तार अंसारी आप ये देखें तो इसकी एक जेनेसिस भी छोटी सी है, आप यहां से शुरू करते हैं, अगर इलाहाबाद से शुरू करें और आगे बढ़ते जाएं बिहार तक, तो उसमें एक बड़ी चीज आती है कि ये जितने भी बेल्ट है ये रेलवे के बहुत बड़े हिस्से थे, रेलवे के ठेकों पर ये लोगों को की का बड़ा सर्वाइवल था, प्लस बहुत सारे लोग जो कोयले की खदानों और कोयले के उसमें शामिल थे, जो कि शक्तिनगर और सोनभद्र के इलाके में था बहुत सारा, तो बनारस उसकी बहुत बड़ी मंडी था। तो बनारस के आसपास, पूर्वांचल के आसपास आप देखें, अतीक अहमद इलाहाबाद में थे, गाजीपुर बनारस के पास, धनंजय सिंह और तमाम लोग, और उसके आगे गाजीपुर में मुख्तार, उससे भी आगे बढ़ जाएं तो सीवान तक उधर शहाबुद्दीन और ये लोग थे, गोरखपुर सूरज भान सिंह, गोरखपुर की साइड में निकल जाए तो और तमाम विजय प्रताप शाही और राजन तिवारी, तमाम लोग बड़े मतलब बाहुबलियों के एक वो थे, शिव प्रकाश शुक्ल जैसे लोग, जो कि काफी समय हुआ उनका एनकाउंटर भी हो गया। तो एक तो उस इलाके में अलग अलग जिलों में अलग अलग क्षेत्रों में ये दो मेन रिसोर्स थे, एक तो कोयला था, और आप छत्तीसगढ़ जब बिहार एक था तो बहुत बड़ा हिस्सा झारखंड में कोयले का उधर भी था, तो कोयला और दूसरा रेलवे के ठेके, इन पर इनकी मेजर सर्वाइवल था एक टाइम तक। तो एक हिस्सा था जिसमें मारकाट खून बहुत खींचतान थी ठेकों को हासिल करने की, रेलवे के ठेकों को, और ये सब था। दूसरा हिस्सा वो है जिसके जिसके लिए ये थोड़ा अच्छा काम भी करते रहते थे, जो उनको रॉबिनहुड के नजरिए से देखता था कि ठीक है वो अपने धंधा उनका कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए तो गरीब आदमी पहुंचा था उसके लिए। तो अपने इलाके में मुख्तार अंसारी की भी वही छवि थी, लेकिन इन तमाम लोगों में मुख्तार अंसारी की छवि एक लिहाज से थोड़ा सा अलग है। मुख्तार अंसारी की एक बड़ी फैमिली लेगेसी है, उसमें उनके दादा, उनके परदादा कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे, और पिताजी फिर आर्मी के चीफ के उस पे रहे उस्मान अंसारी ये। तो वो अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प है कि इतनी एक खूबसूरत और इतनी हैवी लेगेसी वाला आदमी, विरासत वाला आदमी, इस तरह की जरायम की दुनिया में कैसे गया और फिर उधर उसमें कैसे इतना बड़ा नाम बना। तो ये एक दूसरा पहलू है जिस पर
कि उनका आर्मी में भी थे और
हाँ आर्मी में टॉप पोस्ट पे थे, और आर्मी में तो उस्मान अंसारी के बारे में इतनी बड़ी एक बहुत बड़ा फोकलोर है कि किस तरह से उनको जिना लगातार प्रेशराइज करते रहे कि तुम पाकिस्तान चलो और पाकिस्तानी आर्मी में ही गिव हिम लॉट्स ऑफ बिग पोस्ट ये वो, बट ही नेवर एंड ही फॉट अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ये सारी है, तो वो आदमी की, तो ये दो तरह की कहानियां हैं।
एक बात और भी जोरदार,
बाकी आप लोग। हाँ
नहीं, नहीं, मैं तो सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा, बाकी जैसे आपने सूरज भान का नाम लिया, एक जो इलाहाबाद कुंडा से
राजा भैया
राजा भैया प्रताप गढ़वाल नहीं, तो ये लोगों की कहानियां, इनकी कहानियां रोंगटे खड़े करने वाली लोगों को लगती है जिस तरह से बताया जाता है, पर आप कभी इनसे मिले हो एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए रिपोर्टर इन पार्लियामेंट इनके इलाके में, तो देख के लगता है कि अरे ये आदमी
सामान्य लोग ही
हैं। हाँ, नहीं तो एक हमारे रिपोर्टर जो अंग्रेजी नहीं बोल हिंदी नहीं बोल पाते, उन्होंने, मैं नाम नहीं लूंगा, इन्हीं में से एक व्यक्ति से मुलाकात के बाद ऐसे बोला, क्योंकि वो हिंदी नहीं बोल पाते, हिंदी में बात चल रही थी और वो ये सुन के मिलने आए थे कि इनकी कहानियां इतनी जबरदस्त है, तो उसको ये बोला कि, और उसको बेचारे को बिल्कुल हिंदी नहीं आती तो वो कैसे बोलेगा, वो बोला कि तू तो बड़ा अच्छा आदमी है पर तेरा नाम तो बड़ा काला है, उसको हिंदी आती नहीं, उसको पता भी नहीं मैं कैसे,
आप और तुम में क्या अंतर है,
हाँ तो तू तो बड़ा अच्छा है पर तेरा नाम तो बड़ा काला है।
अनंत सिंह वो डिफरेंट लीग के हैं, अनंत सिंह बेसिकली एक सामंत है और वो दिमाग से सामंती है, वो कार नहीं चलाते, वो घोड़ा पे बैठ के चलना,
अनंत सिंह का कोई डिफरेंट किस्सा है, अनफॉर्चूनेटली वो यहां पर नहीं सुनाया जा सकता,
तो आप कुछ कह रहे थे अनंत सिंह को आप लोग गूगल करिए और खूब पढ़िए उनके बारे में, मजा आएगा।
अच्छा मैं उस वक्त एनडीटीवी में हुआ करता हूँ जब अनंत सिंह ने कुटाई कर दी थी पत्रकारों की, और वो हमारे चैनल के एनडीटीवी के पत्रकार जो है प्रकाश को सबसे ज्यादा और रोते हुए पत्रकार क्योंकि हमारे सब दोस्त थे, हम लोगों ने उनके लिए लड़ाई हल्ला मचाया, टीवी में कार्यक्रम किए, उसके बाद उनका
इसमें कोई अश्लीलता नहीं है, इसलिए आज उसके एक दशक बाद जो ये सब आया जो कि टीवी मत देखो ये सब के वो दूरदर्शी थे,
तो
एक दशक पहले ही बोले
जैसे
थे
वो एक दशक
पहले ही बोले थे वो
टीवी
मत देखो, टीवी लफुआ सब
लफुआ जो वो डायलॉग है ना कि सिनेमा देख के तो इस देश का छुट्टियां कट जाता है,
कि इसमें पूर्वांचल और बिहार का जो ये जो क्षेत्र है जो क्राइम बेल्ट है माफिया वाला, एक समय में तो एक मतलब थियोरेटिकल बात है लेकिन उसको एक इस नजरिए से देखा जा सकता है कि उस समय जो पैसा था, जिनके पास कैपिटल था, उन क्योंकि निजी क्षेत्र और उसमें निवेश के प्रोडक्टिव और सोर्सेज नहीं थे, इसलिए क्राइम खुद ही एक कैपिटल इन्वेस्ट करने का एक बड़ा एवेन्यू बन गया, और ये एक जो अपराध है वो पूंजी निवेश का एकमात्र बड़ा सबसे लाभदायक जो है एक मतलब एक स्रोत हो गया कि इसी में कीजिए, क्योंकि और जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं ये नहीं है, जिनके पास पैसा था और कुछ बाहुबल था उन्होंने क्राइम में इन्वेस्ट किया, और जो स्ट्रीट क्राइम है और वाइट कॉलर क्राइम है उसमें जो विभाजन है वो ब्लर हो गया, वो स्ट्रीट क्राइम जैसे जो वाइट कॉलर क्राइम है जो सत्ता में बैठे हैं ब्यूरोक्रेसी है सत्ता में है जो या फिर नेता है वो स्ट्रीट क्राइम से भी कमाने लगे जैसे एक्सटॉर्शन से किडनैपिंग से, तो ये ब्लरिंग हो गई लाइन, और ये दो चीजें हुई, तो एक कैपिटलिज्म का वहाँ ऐसा रहा कि जो बीच का मैन्युफैक्चरिंग है ना वो ये सब एक लेखक ने इस पर लिखा था और एक बहुत मुझे सटीक लाइन लगी कि बिहार खासकर और ईस्टर्न यूपी में द कैपिटलिज्म, मैं इसका हिंदी अनुवाद करूंगा, कैपिटलिज्म हैज एक्वायर्ड बैथोज ऑफ सेनिलिटी विदाउट सीइंग द ऑप्टिमिज्म ऑफ यूथ, ये जो है युवावस्था का जो है आशावाद देखने के पहले ही इसमें जो है वृद्धावस्था की झुर्रियां पड़ गई हैं बिहार में जो और ये में जो कैपिटलिज्म है जो पूंजीवाद है, तो क्योंकि क्राइम है
ये। आनंद ने इसको इस नजरिए से कभी हमने सोचा नहीं कि हाँ एक बड़ा तरीका हो सकता था, और ये अब जब इस नजरिए से सोचा जाए तो मेरे दिमाग में एक घटना आती है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में, जब मैं कह रहा हूँ कि हम लोग उस टाइम की पीढ़ी है हम, जिसमें ज्यादातर सिस्टम कोलैप्स कर रहा था या सड़न शुरू हो गई थी, हमारी समय की फिल्में इतनी घटिया थी 80s में, हमारे समय का गाना इतना घटिया था, म्यूजिक सबसे घटिया, तो हमने लता मंगेशकर को शब्बीर कुमार के साथ गाते हुए देखा है, अब सोचिए कहाँ लता मंगेशकर और कहाँ किशोर कुमार और मोहम्मद रफी के साथ, अचानक से वो शब्बीर और इनके साथ, तो यही गिरावट हमें हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम की थी। हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम में ये हालत हो गई थी कि 3 साल के ग्रेजुएशन का कोर्स 5-5 साल 6-6 साल में कंप्लीट होने लगा था, एग्जाम नहीं होते थे। तो फिल्मों से लेकर, पब्लिक लाइफ से लेकर, कल्चर से लेकर, हम सब जगह वो जो गिरावट का दौर था उसके चक्कर में एक लंबा वक्फा ऐसा आया जब मिड 90s से लेट 90s तक सारी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन बैन हो गए, सब कुछ बंद हो गया, BHU में आज भी नहीं होता है। उस समय कहानी थी कि ये जितने लोग थे ये एक किस्म के आइडियल बन गए थे, इतने आइकॉन थे ये हम लोगों के कि कम से कम औसतन साल में 30-40 यूथ जो इनके लिए काम करता था उसका पुलिस एनकाउंटर कर देती थी। काशी विद्यापीठ है बनारस में, जो 3-4 यूनिवर्सिटीज है उसमें से एक काशी विद्यापीठ है। काशी विद्यापीठ में ये हालत थी 97 में कि इलेक्शन हुआ, अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी और एक 4 पदों के लिए जीत के निकले लोग, अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी की वो विक्ट्री प्रोसेशन में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जीत कर निकलते हुए गोली मार के। तो उसके बाद तो ये सारी चीज जो मैंने कहा कि सब कुछ एक गिरावट के दौर में था वहां पे, और ये लोग एकदम से हीरो बने हुए थे इस तरह के तमाम माफिया। और
एक इंपॉर्टेंट बात मैं अपने प्रोड्यूसर्स को कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं साउंड इज वेरी लो, पुअर ऑडियो, आई डोंट नो उन्होंने फिक्स किया होगा। आनंद के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, आनंद के लिए क्वेश्चन नंबर 144, रोल नंबर 144 के नाम से है ये। और इन्होंने अच्छा सवाल, ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो संजीव सान्याल है उनका UPSC वाले स्टेटमेंट पर आपका क्या कहना है? स्टेटमेंट तो आपको मालूम है,
इसके लिए कोई और कार्यक्रम रखेंगे, वो एक बड़ा विषय है,
बड़ा विषय है, विस्तार से जवाब।
ठीक है, एक और सवाल था इसमें,
अभी भी आ रहा है साउंड के बारे
में, थोड़ा साउंड का देखें, जो भी हमारे कह रहे हैं कि आवाज कम आ रही है, ये तो हो ही गया हमारा।
और भी आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, हम
फाइनेंस मिनिस्टर के हस्बैंड के इलेक्टोरल बॉन्ड वाले कमेंट पैनल पर पैनल क्या सोचता
है? यही चीज है ना जो हम कह रहे थे, मुझे लगता है निर्मला सीतारमण के साथ भी ये, उनके हस्बैंड को बार बार उनका बयान हो सकता है लेकिन बार बार जोड़ना ये अगेन अगेन सेक्सिस्ट मेंटालिटी, क्यों आप बार बार, अब उनका रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है, वो शायद ना
इस तरह से
जो भी डिफरेंट व्यूज रख सकते हैं लेकिन बार बार जक्सपोज करना कि ये देखो फाइनेंस मिनिस्टर के पति क्या बोल रहे हैं, मुझे लगता है बहुत फालतू का।
कांक्षी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे?
बिल्कुल, मनीषा से सहमति करते हुए कि वो जो शुरू में शायद आनंद जी ने भी बोला था कि क्रेडिबिलिटी, औरतों की क्रेडिबिलिटी कि वो पॉलिटिक्स में है पर क्या उनके साथ रहने वाले मेल्स का कोई और ओपिनियन है तो क्या वो उनसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगी, इट्स अ वेरी ट्रिकी स्लोप। और ये हम बार बार देखते हैं कि क्रेडिबिलिटी पे सवाल होता है और यहाँ पे एसोसिएशन बहुत ही मुझे लगता है हमें इग्नोर करना चाहिए, वो एक इंडिविजुअल का ओपिनियन है जो कि उन्होंने आज नहीं 10 साल से ऐसे ही मेंटेन किया है, शायद उन दोनों की पॉलिटिक्स अलग है।
ऑल्सो सी उनका एक्सपर्टीज एज इकोनॉमिस्ट है, तो अगर वो, मुझे लगता है ये बयान देना कि वो बहुत हैविली कॉस्ट करेगा BJP को, ये उनकी एक्सपर्टीज है भी नहीं, कि पॉलिटिकली कैसे इम्पैक्ट होता नहीं होता है आप नहीं बता सकते, एज एन इकोनॉमिस्ट आप
जुर्म की दुनिया जो है उसकी बात मुझे याद आ रही, अगेन बिहार के इलेक्शन में जब हम कई जगह होता है हम जा नहीं पाते हैं अपनी OB वैन जो होती थी, अब तो खैर OB के जमाने चले गए तो उसको खड़ी करके आप मोटरसाइकिल से दूर जाते हैं कोई स्टोरी करने, तो जब मैं गया तो हमने कुछ लाइव किया था उससे परे गुस्सा होके लोगों ने घेर लिया था गाड़ी को, तो रिपोर्ट वहां से कैमरा पर्सन ने कहा कि सर वापस आ जाइए, इन लोगों ने गाड़ी को घेर लिया है और ये कह रहे हैं कि हम आपकी गाड़ी को आग लगा देंगे, जो आप बोल रहे थे वो गलत था और हमारे नेता को आप बदनाम कर रहे हैं। मैंने सोचा कि ऐसे ही कह रहे होंगे लोग, गुस्सा कह रहे नहीं वो धमकी नहीं दे रहे, उन्होंने हमारी गाड़ी से हमारी गाड़ी जलाने के लिए तेल निकाल भी लिया है। तो मुझे वापस आना पड़ा और फिर मुझे एक लाइव करना पड़ा जो कि मैंने फेक किया, उनको पता नहीं था कि क्योंकि वहां हमारा चैनल दिखाई नहीं जा रहा था कि, और उन्होंने खूब भला बुरा कहा हमारे चैनल को, लेकिन ये सोचिए कि आपकी गाड़ी से आपकी गाड़ी को जलाने के लिए तेल निकाल भी लिया गया अगर तो
स्केरी यार, स्केरी। आनंद आपको जोड़ना चाह रहे थे इसमें, तो एक लेटर है हमारे सब्सक्राइबर का वो मैं पढ़ देता हूँ और फिर हमारा दूसरा आखिरी जो विषय है आज का उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। जबीन का ये पत्र है, कह रहे हैं केजरीवाल के अरेस्ट पर आप लोगों ने इनडेप्थ बातचीत जो पिछली बार की बहुत दिलचस्प और बहुत इंफॉर्मेटिव थी, ऐसी चर्चा सुनकर हमारे भी दिमाग खुले, थैंक यू। जब यह सवाल उठा कि अपोजिशन पार्टीज मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर क्यों नहीं उतर कर आती, तब मुझे ख्याल आया 1975 में जेपी मूवमेंट चला और गवर्नमेंट के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए, उसकी प्रतिक्रिया में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी। सोचिए अगर आज मोदी इमरजेंसी लगाए तो क्या होगा। मेरे ख्याल से तब यह साफ हो जाएगा कि मोदी और इंदिरा गांधी बिल्कुल एक जैसे नहीं है। मुझे लगता है यह सब एक जैसे है वाली बात बोलना हमें छोड़ना चाहिए। जो देश की हालत है आज, पहले ऐसी नहीं थी, पहले कभी ऐसी नहीं थी। मोदी और आरएसएस की जो ज्वाइंट तानाशाही दूसरे लेवल की है। इस पर आपके क्या विचार हैं? तो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक कहानी बताई थी, मैं वो कहानी छोटी सी बता देता हूँ आपको। कि एक बहुत बड़े कड़ाहे में खूब ठंडा पानी भरा हुआ था और उसमें एक मेढक को छोड़ दिया एक आदमी ने। तो मेढक को शुरुआत में बड़ा मजा आया और तैरने लगा अपना मस्त ठंडे पानी में, फिर धीरे 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 नीचे से वो उस कड़ाहे को गर्म करने लगा। गर्म करने लगा तो पहले उसको पैर जले, फिर उसकी चमड़ियां जलने लगी, फिर कुछ हुआ, धीरे 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 करके पानी इतना खोल गया कि मेढक मर गया। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया था दरअसल, कि खोलते हुए कड़ाहे में मेढक को डाल दिया था। बस यही एक बहुत बारीक सा अंतर है, बाकी अगर कोई इसमें कुछ जोड़ना चाहे।
हम तो ये अब कुछ हम ये उदाहरण क्लाइमेट चेंज को लेके देते हैं, लेकिन अभी मैं कहूंगा नहीं।
हाँ।
क्योंकि जिस तरह से परिवर्तन आ रहे हैं धीरे धीरे, वो ऐसे पता नहीं चल रहे हैं और एक दिन
हम बिल्कुल
हम जा रहे हैं।
तो एक वेड आनंद बोल सकते हैं, फिर मैं एक क्वेश्चन।
ये मतलब कई बार इस पर चर्चा हो चुकी
है, इमरजेंसी पर, घोषित अघोषित पर।
मेरे ख्याल से देखिए, इंदिरा गांधी भी जब 77 के बाद 80 में वापस आई, तो जो पूरा जो ऑथोरिटेरियनिज्म पे उन पर आरोप लगा जो लोग थे, ये तो कोई एक ओवरराइडिंग फैक्टर जो था, वो 3 साल में उन पे नजरिया बदल गया। तो ऐसा कोई ओवरराइडिंग फैक्टर हमेशा इलेक्टोरेट के दिमाग में नहीं रहता है कि अब 3 साल में ही इंदिरा जो है मजबूती से उसकी कैसे वापिस आ गई। और ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात है कि डोमिनेंट पार्टी स्ट्रक्चर में हमने जो है 3 ही तरह की सरकार देखी है। अगर उस आजादी के बाद का जो वो शुरू में जो रहता है, वो जो है वो एक डिविडेंड इफेक्ट पे चला जाता है कि उसके बाद एक हेजेमनी, लेकिन उसके बाद का तो एक इंदिरा और एक राजीव और ये
मिक्स कार गालिक।
और एक चीज है कि कई बार छोटी चीजें, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो लोग भूल जाते हैं कि इंदिरा गांधी जो केस हारने के बाद जो उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी 1975 में, तो चुनावी तंत्र के दुरुपयोग में, उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट था तो खिलाफ था, लेकिन उस जजमेंट को ध्यान से पढ़िएगा तो उसमें उनको सभी बड़ी चीजों से उन्हें जो है बड़े आरोपों को खारिज कर दिया गया था। एक छोटे से आरोप में उनको किया गया था कि ये जो टेंट लगाया गया और टेंट लगाने में जो सरकारी तंत्र यूज हुआ वो गलत था, बाकी बड़े बड़े आरोप राज नारायण ने जो लगाए थे उसे खारिज कर दिया। मेरे कहने का इसके तरफ इशारा है कि कई बार छोटी चीजें जो है एक जो है रेजिम चेंज के लिए काफी हो जाती है, अगर तकनीकी दृष्टि से देखें तो छोटी चीजों को लेकर। और मेरे ख्याल से ये जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, जैसे कि इन लोगों के पास और भी कई उपाय थे। इंदिरा एस आर बोमई जजमेंट 1993 के पहले 94 सॉरी के पहले बहुत सारे ऑप्शंस थे केंद्र सरकार को, जैसे इतनी सरकारें बर्खास्त कर देना, राज्य सरकार वगैरह। अब राज्य सरकार बर्खास्त करना बहुत मुश्किल है। वो सुप्रीम कोर्ट में स्ट्राइक डाउन होना ही होना है अगर बहुत मजबूत आधार नहीं हो तो। अब जो मजबूत सरकार आई, जो मजबूत से मेरा मतलब है कि इलेक्टोरली बहुत ज्यादा सीटें जीत के आई,
बहुमत से आई,
उसके पास अब ऑप्शंस जो हैं अब दूसरे तरीके के हैं, तो वो ऑप्शंस एग्जॉस्ट होके
exactly.
तो अब
नहीं, मैं कहता कि मनीषा के पास सवाल है, मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कि जो आनंद की बात में जोड़ते हुए 1975 में इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए तो तब भी ये बात एक बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके बाद उस चुनाव में हार गई इंदिरा गांधी, चुनाव हार गई। ये दिखाता है, कभी कभी मैं कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के पक्ष में खड़ी होती है बात उसके बावजूद, कि आप 1975 में आपने आपातकाल लगाया, सारे आपने संस्थानों पर कब्जा करने की कोशिश की, बहुत हद तक किया भी, बट इन 77 इट वॉज रोबस्ट इनफ कि एक इलेक्शन हो पाया जिसमें इंदिरा गांधी बुरी तरह से चुनाव हारी।
एक इसमें प्यू रिसर्च काफी इंटरेस्टिंग आया है, इनफैक्ट हिलाल अहमद ने एक पीस भी लिखा है प्रिंट में। तो एक चीज तो है बहुत क्लियर कि जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं अभी भी जो वो रिसर्च दिखाता है कि 70% से 80% इंडियंस जो हैं मानते हैं कि वोटिंग ही बेस्ट वे है टू गेट रन अ कंट्री डेमोक्रेसी। तो मुझे नहीं लगता कि एकदम से मतलब डिक्टेटरशिप के प्रति लोगों का बहुत कोई आकर्षण है, इंडिया में नहीं है, लोग अपना वोट बहुत सीरियसली लेते हैं। और एक पॉजिटिव चीज उस सर्वे में आई थी कि 70% 80% तो बिलीव करते हैं कि डेमोक्रेसी से ही रन करनी चाहिए, और मोस्टली 70% बिलीव करते हैं कि डेमोक्रेसी इंक्लूसिव होनी चाहिए, तो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से लोग होने चाहिए, विमेन ज्यादा होने चाहिए। लेकिन वहीं साथ में ऑलमोस्ट 60% जो इंडियंस हैं वो ये फील करते हैं कि उनको एक स्ट्रांग लीडर चाहिए जो काम करे, जिसके जिसको ज्यादा रोड़े ना लगे। तो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की तरफ हमेशा आकर्षण इंडियंस का है, लेकिन मुझे नहीं लगता उसका मतलब है कि वो डिक्टेटर पसंद करेंगे। अगर इमरजेंसी अगर मोदी जैसे लागू करते हैं तो मुझे लगता है वो मोदी के अगेंस्ट जाएगा, मुझे नहीं लगता वो इतने पॉपुलर हैं कि इसीलिए बीजेपी ये सब कर भी रही है कि वोट तो हो रहा है आप सब वोट दीजिए, लेकिन वो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो अब बात हो रही है कि पैसा सबके पास कितना है, एजेंसीज कौन यूज कर रहा है।
एक जो है जस्ट इंट्यूशन पे, मैं ये प्यू रिसर्च पे नहीं, ये मैंने कई बार कहा है पहले भी कि भारतीयों का रुझान मजबूत नेताओं पर है, ऑथोरिटेरियन नेताओं के प्रति नहीं है। इसके कई कारण हैं, क्योंकि दो दशक तक कोएलिशन गवर्नमेंट्स में जनरली लोगों ने पॉलिसी पैरालिसिस देखी कि जो सरकार है भी वो बहुत मजबूत नहीं है, बहुत चीज चाहते हुए भी नहीं कर पाती है।
तो आनंद मैं रोकना चाह रहा हूँ, लेकिन ये चीज जो ग्राउंड रियलिटी इस हिंदुस्तान की उससे एकदम बदल जाती है। आप अगर देख लें सबसे मजबूत सरकारों में सबसे बड़ी गाली हिंदू ग्रोथ रेट हुआ करती थी, और जो सबसे बड़े नंबर में ग्रोथ इस कंट्री ने हासिल की है वो कोलिशन गवर्नमेंट के दौरान हासिल की है, 92 के सुधारों के बाद हासिल की है। तो ये चीजें कई बार ना हम कह देते हैं, लेकिन वो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज आप बताइए, 8% 8.5% तो कभी इस देश ने हासिल ही नहीं किया।
ये तो आप मतलब आंकड़ों पर जा रहे हैं, यहाँ तो बात हो रही है लोगों का रुझान क्या है। लोग जो है निर्णायक डिसाइसिव लीडर चाहते हैं जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, कि मतलब जो निर्णय करने के मजबूत स्थिति में हो, क्योंकि खासकर ये एनडीए सरकार आई उससे पहले के जो 10 साल थे उसमें कई कार्यक्रम आए होंगे जो आप ग्रोथ रेट उससे पहले भी कोएलिशन गवर्नमेंट 90 की, लेकिन लोगों में ये परसेप्शन बना कि सरकार कमजोर है, सरकार कमजोर है इसलिए कई समझौते करती है, इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। मैं मतलब कि डेमोक्रेटिक जो प्रैक्टिस है उसमें लोगों के रुझान क्या है, लोगों के एटीट्यूड परफॉर्मेंस का बोल रहे हैं कि कोएलिशन गवर्नमेंट का ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है या डोमिनेंट पार्टीज सरकारों का, उसमें अंतर हो सकता है। वो आखिरी हो सकता है,
ये बात तो पहले भी कहती जाती रही कि जो जनता के हक में मजबूत सरकार जरूरी है या मजबूर सरकार जरूरी है। मजबूर भी यहाँ पर एक गलत वर्ड है क्योंकि वो मिलाने के लिए रिदम बना दिया, परंतु जब एक कोएलिशन गवर्नमेंट होती है तो उसमें चेक एंड बैलेंस शायद ज्यादा होते हैं, कहीं आर्म ट्विस्टिंग भी होती होगी। लेकिन ये सोचना, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि परसेप्शन की बात है, लेकिन ये जो जनता में फैलाया जाता है परसेप्शन की एक मजबूत नेता और मजबूत, तो अभी आप देखिए जो रॉट निकल के आ रहा है वो क्या हो रहा है कि मतलब खुल्लम खुल्ला एक्सट्रॉशन हो रहा है, और ये तो मजबूत सरकार नहीं कही जा सकती। मजबूत सरकार वो है जो संवैधानिक प्रक्रियाओं को मजबूती से लागू करे,
लोकतांत्रिक
प्रत्येक नेता का ग्लोरिफिकेशन उसमें उतना
इम्पोर्टेंट ना हो।
मतलब मतलब इसमें मतलब क्या होना चाहिए, व्हाट आउट में आप चले गए, हम लोग मेरे ख्याल से चर्चा कर रहे थे क्या है,
नहीं, वो मैं आपकी बात
मतलब लोग क्या सोचते हैं।
इसी प्यू रिसर्च में छोटी सी और इंटरेस्टिंग थिंग, मेजॉरिटी इंडियंस आर्मी रूल को भी प्रेफर करते हैं, लेकिन उसको आप पाकिस्तान से कंपेयर नहीं कर सकते, वो क्योंकि एज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन आर्मी बहुत ट्रस्ट एंजॉय करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पाकिस्तान का आर्मी रूल चाहते हैं।
ठीक है, कांक्षी आप कुछ इसमें ऐड करना चाहती हैं?
नहीं अभी ठीक है, मुझे लगता है सारे पॉइंट्स कवर्ड हैं। अगर
स्पेसिफिक क्वेश्चन बढ़ते हैं, जो कि एक नया निर्णय आया है और केंद्र सरकार ने अप्रोच किया है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF है उससे, और उसको ये जिम्मेदारी दी है कि एक नेटिव एक हिंदुस्तानी रैंकिंग सिस्टम बनाए लोकतंत्र को तय करने का, लोकतंत्र की मजबूती, लोकतंत्र के रोबस्टनेस को तय करने का, बजाय इसके कि हम पश्चिमी और विदेशी जो संस्थाएं हैं जो लोकतंत्र की रैंकिंग देती हैं, जैसे स्वीडन की एक संस्था है वीडेम, उसने भारत की रैंकिंग को 104 नंबर पर रखा है और इसे लोकतंत्र से की कैटेगरी से गिराकर ऑटोक्रेसी की श्रेणी में डाल दिया है। तो अब भारत सरकार का कहना है कि ऐसा बहुत हो गया, ऐसा नहीं चलेगा, और पश्चिम के राय, पश्चिम के विचार से हमारी वो क्यों तय हो। और मुझे की बात है कि क्या बात है, चिंता की भी बात है, शर्म की भी बात है, बहुत सारे पत्रकारों ने इस पूरे विचार को आंख बंद कर अपना एक समर्थन दे दिया। अब इसमें मैं इस बातचीत को शुरू कर रहा हूं तो इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि ये हर दौर का सच है कि जो ताकतवर होता है, जो बहुत पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है, उसके नजरिए से बहुत सारी चीजें तय होती हैं। तो पिछली जो पूरी सदी रही है और जो औपनिवेशिक दौर रहा है उसमें वो यूरोप का दौर रहा है। यूरोप ने अपनी पूरी कल्चर, अपना लैंग्वेज, अपनी संस्कृति और लिटरेचर, तमाम जो भी चीजें आप समझें, कहें, कह सकते हैं, उसको बाकी दुनिया के ऊपर थोपा है या वो चीजें हावी हुई। लेकिन उसके बाद जो सुधार का भी दौर हुआ, जिसमें क्लेम किया लोगों ने, अपनी इंडिपेंडेंस को क्लेम किया, कॉलोनियलिज्म का, औपनिवेशीकरण का खात्मा हुआ, समाप्ति की तरफ बढ़ा, वो सारी चीजें भी हैं। तो वो हमारी बहुत रीसेंट चीजें हैं। इसके बावजूद क्या ये बात सच है? और उसकी दूसरा पहलू ये है कि आप केवल अगर ये कर दें कि हमारी अपनी रैंकिंग होगी, हमारा सब कुछ अपना होगा, ये काफी हद तक ऐसा है कि आप गंदगी को कारपेट के नीचे छुपाकर और साफ सुथरा होने का क्या का दिखावा कर सकते हैं। बीमारी शरीर के अंदर हो और आप लक्षणों की बात ना करके और बीमारी की बात ना करके सिर्फ लक्षणों के इलाज की बात करें, क्या ये हो सकता है कि दिल्ली में, जिसमें इस पर पहले भी एक दिन मैं इस अपने शो में भी यही बात कर रहा था कि दिल्ली में हमेशा हमारे यहाँ हवा खराब रहती है, दुनिया कहती है कि आप 0 से 50 के बीच में अगर आपका AQI तो आप सुरक्षित हैं, वहां सांस ले सकते हैं, या हमेशा 250-300 के बीच में मामला फंसा रहता है, तो आप क्या हिंदुस्तानी रैंकिंग सिस्टम ऐसा कोई बना के दे दें हमको और उसमें ये तय कर दें कि AQI हमारी सुरक्षित सीमा वो 300 है, तो हम 300 में सुरक्षित हो गए,
उसका भी, लेकिन हम उससे भी बहुत ऊपर रहते हैं।
मतलब हमारा ये जो लॉजिक है कि हम बना रहे हैं एक सिस्टम और हमको अपनी रैंकिंग, अपनी छवि केवल, तो ये छवि प्रबंधन तो हो सकता है लेकिन एक्चुअल वास्तव में हमारी स्थिति इससे कुछ बदलने वाली है, ये है सवाल जो मेरे दिमाग में। आप सबका
पहले तो मुझे लगता है बड़े डिप्लोमेटिक डिजास्टर भी हो सकता है। एक तो क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को एसोसिएट होना ही नहीं चाहिए किसी भी डेमोक्रेसी आप अपने फ्रेंड्स के लिए क्या, रशिया को आप कहाँ रैंक करेंगे, सऊदी अरेबिया जिससे आपके अच्छे रिलेशंस बन रहे हैं उनको कहाँ रैंक करेंगे,
बिल्कुल
ईरान को कहाँ रैंक करेंगे। तो आपके नेबरहुड में फ्रेंड्स भी हैं जो डेमोक्रेसी नहीं है, तो मतलब ऐसा टास्क आप करना क्यों चाहते हैं? मतलब इसका मुझे लगता
है
क्योंकि गवर्नमेंट नहीं एसोसिएट हो सकती किसी ऐसी डेमोक्रेटिक इंडेक्स में,
मुझे लगता
है। जो आपने बात कही, क्योंकि वो वाली बात है कि व्हाट अभी जो बीजेपी अच्छे से जानती है और करती है, वो ये एक सेंटिमेंट है ग्लोबल साउथ वर्सेस ग्लोबल नॉर्थ का, हमने एक बहुत फील किया है और शायद इस पर बहुत सारे लेफ्ट, सेंटर ऑफ द लेफ्ट, सेंटर, हर तरह के लोगों ने इस बारे में लिखा है कि द वेस्टर्न कॉलोनियल हैंगओवर जो हमको है, हमें उससे बाहर निकलना है। ये पहली बार नहीं है, क्योंकि मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन फॉलो कर रही थी जब स्मृति ईरानी जी से बोला गया कि इंडिया जो है 149th-147th रैंकिंग पर आता है वुमेन्स पार्टिसिपेशन को लेके इन पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये जो दूसरे देश हैं ये सिर्फ पार्लियामेंट को देख रहे हैं, आप क्यों हमारे यहाँ की 43% रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एट पंचायत लेवल को भूल जाते हैं, उस हिसाब से तो इंडिया विल बी एट द टॉप ऑफ द चार्ट्स, राइट? आप तो ये, और ये पहला नहीं है, अगर हम प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग का आना भी देखते हैं, वहां पे भी बहुत सारे मैकेनिज्म चेंज हुए हैं। हम कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं कि हम अपना एम्प्लॉयमेंट कैसे मेजर करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे मेजर करते हैं, देर आर अ लॉट ऑफ मेट्रिक्स दैट आर बीइंग चेंज्ड। क्वेश्चन इज कि ये जो प्रोसेस है जिसको हम साइंटिफिक टेम्परामेंट की प्रोसेस बोलते हैं, व्हाट इज दिस न्यू साइंटिफिक टेम्परामेंट, उसका बेस रिसर्च कैसे हो रहा है, उस पर सवाल मेरे हिसाब से बनना चाहिए और होना चाहिए। पर एट द सेम टाइम ये जो ग्लोबल साउथ का एक कॉमन एजेंडा हो सकता था वो इंडिया उसको लीड करना करने की कोशिश कर रहा है कि हम डेमोक्रेसी इंडेक्स बनाएंगे। मनीषा ने बात अच्छी कही कि आप बाकी लोगों को कैसे रैंक करेंगे, शायद इंडिया पहले ये बोलेगा हम सिर्फ खुद को रैंक करेंगे या रैंक छोड़ दीजिए, हम पहले एक इंडेक्स बनाएंगे और वो हम ओपनली फ्लोट कर देंगे, जो चाहे अपने आप को उस हिसाब से सेल्फ रैंकिंग कर सकते हैं लोग। आई एम जस्ट लाइक बीइंग वेरी ओपन सोर्स अबाउट इट,
जिसमें हमारा अपना एक स्थान जरूर रहेगा और बाकी लोगों को छोड़ देते हैं।
हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे?
मैं बस अपनी यही बात को खत्म कर रही थी कि हमारे पास ग्लोबल साउथ में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बहुत सारी चीजों में हमसे बेहतर भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन में नेपाल इज बेटर, इनफैक्ट वी आर वर्स देन पाकिस्तान एट सम यू नो समटाइम्स। तो जब हम उन सारी चीजों को देखते हैं तो हमको इसको एक ओपन सोर्स की तरह, और इंडिया कुड हैव लाइक रियली यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू लीड इट इंस्टेड ऑफ सेइंग सेल्फ डिक्लेयरिंग कि हम अपना बना लेंगे।
लेकिन एक चीज और है, जैसे ग्लोबल इंडेक्स होते हैं बिग पावर्स ऑफ द वर्ल्ड जैसे यूएस है, वो इनको कभी कभी यूज भी करता है अपना जैसे सैंक्शंस या अपनी पॉलिटिक्स या अपना हावी होने के लिए बाकी देशों में, क्योंकि वो एक पावर है। इंडिया अभी वो सुपर पावर नहीं है, अगर हम अपना इंडेक्स बना exactly. भी रहे हैं तो हम क्या करेंगे उसे? हमारे को चाहिए हमारे अपने इंडिया के इंडेक्स स्ट्रॉन्ग हो जिससे हम सेल्फ इंप्रूवमेंट कर सकें। मतलब अभी ये गिमिक है मेरे ख्याल
से, गिमिक इसी वही में कह रहा हूं शुरुआत में,
क्योंकि हम फ्लेक्स नहीं कर सकते।
जो वो इतिहास हो, लिटरेचर हो, सारी चीजें पावरफुल लोगों के नजरिए से लिखी जाती है, लेकिन आप अभी उस पोजीशन में है क्या, ये आकलन करना बहुत महत्वपूर्ण है।
और ये दोस्ती को कॉस्ट करेगा, जो हमारे अनडेमोक्रेटिक फ्रेंड्स हैं उनके साथ हम क्यों
उसकी परिभाषा ही ये है कि कोई ऊपर रहेगा कोई नीचे रहेगा। रैंकिंग अपने आप में तो कोई स्टेटमेंट है नहीं। तो नेशनल पावर जो है, जो मान लीजिए फॉरेन पॉलिसी का ही एक ये इंस्ट्रूमेंट हो, तो नेशनल पावर के बहुत कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं। ये होगा भी तो बहुत बाद का कॉन्स्टिट्यूएंट, सॉफ्ट पावर, डेमोक्रेटिक आइडियल्स, डेमोक्रेटिक आइडियाज वगैरह, ये हार्ड पावर के बाद ही आएगा। जो आपका इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है, जो रियलिस्ट प्रिज्म है देखने का,
दुनिया में जो
हाँ, तो ये नेशनल पावर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ये बहुत बाद में आएगा। जो सॉफ्ट पावर, जो जोसेफ नाई का कॉन्सेप्ट है, वो बहुत उसका स्थान बहुत बाद में आया है। जैसे कि और लोग भी बोल रहे थे, जब एक विश्व शक्ति के रूप में आप अपने को इंट्रेंच कर लेते हैं उसके बाद। लेकिन एक दूसरे, मेरे ख्याल से एक तो थोड़ा प्रीजज भी करना है कि अभी उसका स्वरूप क्या है, मतलब। लेकिन जो भी खबर के आधार पे आप बोल रहे हैं, तो एक इसमें मुझे बेहतर विकल्प लगता है कि सरकार को जो अपने प्रचार के माध्यम है, जो इंस्टीट्यूशनल जैसे प्रसार भारती है, दूरदर्शन वगैरह, इसका राष्ट्रीय फैलाव करना चाहिए। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय फैलाव करना चाहिए कि वो जैसे एक अपना एक इमेज जो प्रोजेक्ट करना चाहती है, कोई भी सरकार आए, इंडिया आए, कोई भी कांग्रेस आए वगैरह, तो उसमें एक ग्लोबल मीडिया जो है का उसका एक इंस्टीट्यूशन रहे जो उसकी बात को ज्यादा देशों तक और अलग देशों में सिर्फ भारत संबंधित चीजों को नहीं दिखाना। जैसे कि मान लीजिए उसका जो है एक इस्तांबुल में भी कॉरेस्पॉन्डेंट हो, एक आपको हरारे में भी हो, ग्लोबल साउथ में तो चलिए, नॉर्थ जो ग्लोबल नॉर्थ है उसमें भी हो, सारे में हो, तो उससे मेरे ख्याल से ये खुद ब खुद एक सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन का एक बड़ा चीज उनके हाथ में आएगा। जैसे कि कुछ बड़ी शक्तियां हैं जो कि ग्लोबल मीडिया प्रेजेंस रखती हैं, जो एस्पिरेशनल पावर्स हैं, तो उसको सरकारी माध्यम ही देखा जाएगा कि ऑफिशियल वर्जन है लेकिन एक वर्जन है।
अल जज़ीरा बहुत अच्छा एग्जांपल
है। तो एक तो वो है। तीसरी चीज है कि हम अब जैसे सरकार भी या सरकार के जो आलोचक हैं वो भी डेटा से कोई आईएमएफ का डेटा आया वो सरकार के पक्ष में है, उसको सरकार दिखाएगी कि देखो आईएमएफ ने ये कहा, और जो उसके पक्ष में नहीं है उसको नहीं दिखाएगी और या उसको उसका आलोचना करेगी उसका। तो हम सिलेक्टिव भी हैं जैसे कि इसी रैंकिंग में अगर कुछ। और तीसरा है कि मेरा नहीं मानना है कि ये जो रैंकिंग्स आती हैं वो फ्लॉलेस हैं, उसमें मेथोलॉजिकल बहुत इश्यूज हैं, बहुत इश्यूज हैं, मतलब कि इस पे ऐसा नहीं, सरकार के जो आलोचक हैं उन्होंने भी इस पर लिखा है कि मेथोलॉजिकल इश्यूज काफ़ी हैं। जैसे आप ही के जो कार्य क्षेत्र है उससे संबंधित जो मीडिया रैंकिंग आती है उसमें कई देश ऐसे हैं जिसमें मीडिया की स्थिति भारत से काफ़ी खराब है लेकिन उसे भी ऊपर रखा जाता है। कि अब उनके पैरामीटर्स पे भी जो है क्रिटिकल स्क्रूटनी आप कर सकते हैं।
तो इसमें कांक्षी आपको इसमें कुछ जोड़ना है?
नहीं, मेरे पॉइंट्स आई थिंक कवर हो गए।
तो हम वैसे तो काफी विस्तार से बात हो गई हितेश, आप कुछ?
नहीं, मैं बस नहीं कह रहा हूँ, बाकी सारी बातें लोगों ने कह दी है। वो ये कि एक तो तरीके ये सारी बातें हुई लेकिन ये जानना बहुत कठिन भी नहीं है, मतलब मैं उसको रैंकिंग के हिसाब से न रखें। अगर आप अपने ही देश के भीतर चार हिस्से बांट लें क्या ये वेरी गुड है, गुड है, सेटिस्फैक्टरी है, पुअर है, ये जानना इतना कठिन भी नहीं है कि लोकतंत्र कैसा काम कर रहा है। नंबर वन, क्या आपके इंस्टीट्यूशंस ठीक से काम कर रहे हैं, आपकी FIR अगर किसी गरीब की है न्याय उसे मिल रहा है, जस्टिस मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या उसकी जेब में इतना पैसा है, क्या वो निडर होके घूम सकता है, क्या बोल सकता है। तो इसको जरूरी नहीं कंपार्टमेंटलाइज किया जाए, वो आप महसूस कर सकते हैं। नहीं, अनुभव के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से आप उसे महसूस कर सकते हैं। और ये भी एक बात है, इसको पॉलिटिकल साइंस की भाषा में आनंद ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि डेमोक्रेसी भी ऐसी है ना कि प्रदूषण तो नहीं कहना चाहिए उसे, वो इस तरह से है ना, कहीं पर डेंस है फिर वो कहां तक पहुंचती है। जैसे लुटियंस में बहुत अच्छा वातावरण रहता है, उसके बाहर बहुत खराब है ना। तो डेमोक्रेसी किसको उपलब्ध है, किसको नहीं उपलब्ध है, ये एक बड़ा ही एक मॉरल क्वेश्चन है। तो लोग भूखे कई बार होता है, ये भी कहा जाता है, और ये मैं किसी अपने देश की नहीं, ये वर्ल्ड वाइड कहा जाता है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं कि लोग तब हिंसा नहीं करते हैं जब वो भूखे होते हैं, लोग तब हिंसा करते हैं जब उन्हें लगता है कि वो जानवरों की तरह कुचले जा रहे हैं। तो ये एक जस्टिस का पैरामीटर है, जब जस्टिस मिल रहा है आपको तो वो लोकतंत्र है। और जो आपने चुना है नेता, वो जैसे हम विदेश का इसलिए भी लोगों को पसंद आता है ना कि कई बार उनके लोग रिटायरमेंट के बाद उसी हवा में नहीं रहते। यहाँ पर एक पंचायत सदस्य भी रिटायरमेंट के बाद 10 साल तक बताता है कि पंचायत सदस्य हूँ, वहां आपका राष्ट्रपति भी उसके, और राष्ट्रपति रहते भी वो वैसे ही घूमता है या ट्रेन का भी इस्तेमाल कर सकता है यूरोप में, तो वो बराबरी नहीं दिखती ना। तो इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन आता है, बाकी बातें तो यहाँ पर मैं अभी मानता हूँ कि कई देशों के मुकाबले
जो है बहुत बड़ी बात है। अभी जो है ना पटना में लोग जीप पर लिखा कर चल रहे
पराजित विधायक
नहीं बीपीएससी चयनित शिक्षक।
तो मूल बात कहने की है कि मतलब उसमें ये जो उपलब्धता है न्याय की वो सबसे बड़ी मेरे लिए पैरामीटर है।
तो मेरे ख्याल से काफी विस्तार से बात हो गई और हमारा समय भी पूरा हो रहा है और रिकमेंडेशन एक है जिसको हमें पूरा करना है। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने अपने विचार रखे, विचारों को यहाँ पढ़ पाना संभव नहीं था मेरे लिए, लेकिन सवाल एक दो हमने आप लोगों के शामिल किए हैं। लेटर्स लिखिए जरूर, बताते रहिए क्या हम अच्छा कर रहे हैं, क्या अच्छा करने की ज़रूरत है, इस तरफ हमारे ध्यान को हमारा ध्यान खींचते रहिए। रिकमेंडेशन की प्रक्रिया मनीषा सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। इस हफ्ते
हमने क्वेश्चंस वैसे कुछ लिए नहीं, बट ठीक है, अब हमारा
दो क्वेश्चन हमने ले लिया है इसमें से, और क्या कहें, कुछ स्पैम भी इसमें बहुत आ रहे हैं,
स्पैम भी आ रहा है,
स्पैम आ रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ से कुछ कर नहीं पा रहे।
नेक्स्ट टाइम हम मॉडरेटर रख लेंगे क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि हमारे पास आपके व्हाट्सएप पे आना चाहिए ये भी। तो थैंक यू फॉर दैट सजेशन, हमने पढ़ लिया। splainer.in में एक समर्थ बंसल का एक्सप्लेनर है ऑन द दिल्ली लिकर केस, बहुत ही अच्छा सिंपल लिखा है, सबको पढ़ना चाहिए, इंग्लिश में है लेकिन अगर वो केस में आपको कंफ्यूजन है क्या हो रहा है तो वो जरूर पढ़िएगा। और PMLA के जो प्रोविजंस हैं और कैसे इस केस में यूज हो रहे हैं वो भी बहुत डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन करा है, क्योंकि इस केस के अराउंड आई थिंक बहुत कंफ्यूजन है और क्लैरिटी किसी को नहीं है, क्योंकि एजेंसीज भी बहुत क्लियरली नहीं बता रहे हैं उनके पास प्रूफ क्या है। बहुत अच्छा एक्सप्लेनर है, वो पढ़िएगा।
इन्वॉल्व है ईडी के अलावा, उसमें सीबीआई भी इन्वॉल्व है,
अब सीबीआई सत्येंद्र जैन को भी घेरे में लेना, तो जरूर पढ़िएगा।
हृदेश कांक्षी आप, हाँ ये अच्छा है, बल्कि कांक्षी से ले लेते हैं रिकमेंडेशन, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे हमारे दर्शकों के श्रोताओं के लिए?
कुछ मतलब जो रेकमेंडेशन अभी मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा में बहुत सारा रेकमेंडेशन है, और लापता लेडीज अगर ना देखी हो
तो मुझे
या किरण राव की डायरेक्टोरियल मूवी है, उन्होंने डायरेक्ट किया, मतलब धोबी घाट डायरेक्ट करने के बाद 2010 या 11 में वो वापस से उन्होंने डायरेक्टोरियल री एंट्री किया. लापता लेडीज इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुली पुट औरतों की एस्पिरेशन और घूंघट का वेल कैसे कई बार आड़े आता है, वेरी ब्यूटिफुली टोल्ड विदाउट हर्टिंग एनीवन सेंटिमेंट, ब्यूटिफुल स्टोरी. बॉक्स ऑफिस
पर भी जरूरत है कि किसी का सेंटिमेंट हर्ट नहीं होना चाहिए इस समय देश में, कहानी भी हो जाए,
मतलब इन योर फेस फेमिनिस्ट मूवी नहीं होकर वो एक्चुअली सबके दिलों में काफी उसने घर किया, एक जेंडर इक्वालिटी पे बड़ी अच्छी मूवी है.
ठीक है, थैंक यू. आनंद, अब आपका रिकमेंडेशन ले लेते हैं.
मेरे दो हैं. एक मैंने किताब पर ही हाल में मतलब दोबारा पढ़ी, और इप्सिता नाथ की किताब है मेम साहिब. तो ये जो ब्रिटिश एरा में जो भारत में उनका शासन था उसमें जो ब्रिटिश महिलाएं हैं उन पर है कि जो यहाँ रहती थी, और ख़ासकर जो यहाँ लोग ब्रिटेन से लोग आए थे, जो पुरुष आए थे उनके साथ जो काम कर ने आई या फिर उनकी पत्नियां तो वगैरह, तो उनके दृष्टि से और कॉरेस्पॉन्डेंस पे लेटर्स पे आधारित है. और मेम साहिब उनमें हम लोग तो सभी ब्रिटिश वीमेन को मेम साहिब ही कहते हैं, लेकिन उनमें से भी मेम साहिब कौन था, हायरार्की क्या थी.
अच्छा.
जो खासकर आईसीएस ऑफिसर्स हैं उनकी वाइफ्स को फर्स्ट लेडी कहा जाता था, तो और उन लोगों का क्या, और उन्होंने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में अपने खासकर अपने हस्बैंड्स को गाइड किया, उनके वो सजेशन दिए, इस पर काफ़ी रिसर्च किया है इप्सिता नाथ ने और हिस्टोरिकल आर्काइव से, तो अच्छी किताब है नेम साहिब हार्पर कोलिंस पे. और दूसरी है, एक फिल्म मैं कर रहा हूँ, पुरानी फिल्म है डेविड लीन की लॉरेंस ऑफ अरेबिया. तो उसमें ये भी मैंने दोबारा देखी, और इस बार मैं जब युवा था तब देखी थी, अब
अभी भी आप युवा ही हैं.
अब नहीं नहीं, मतलब जब ज्यादा
कम युवा था, कम युवा हो गया
तो
इस पैनल में पूरे मिला के मैं ही सबसे बुजुर्ग हूँ.
आपकी बुजुर्गियत को सलाम है.
नहीं, क्योंकि आपने वृद्धावस्था छिपाई नहीं है. तो इसमें जो तीन कारणों से मैं ये कर रहा हूँ, और एक मीडिया का भी पक्ष है उसमें, और एक आज का जो पक्ष है, लेकिन उसका ये कोई नारी विरोधी फिल्म नहीं है, लेकिन एक, हाँ, लेकिन अच्छा. मैं एक इसमें रिमार्केबल चीज देखा कि, और इसमें बहुत हिस्टोरिकली एक्यूरेसीज हैं इस फिल्म में, लेकिन ये कर्नल लॉरेंस के राइटिंग्स पे हैं, और उनका खासकर सीरिया वगैरह में जब वो गए थे द्वितीय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय तो वगैरह, तो वो एक है कि ये 3 घंटे 35 मिनट की फिल्म है, और इसमें एक फीमेल कैरेक्टर का डायलॉग नहीं है, एक भी फीमेल कैरेक्टर नहीं है सारे 3 घंटे की फिल्म. तो एक चीज तो है कि आजकल,
तो ये एक स्टेटमेंट है या डेलिबरेट,
मतलब कि मैं एक चीज कह रहा हूँ कि आजकल जो फिल्में बनती हैं जनरली तो वो ज्यादा फैंसी ड्रेस कंपटीशन टाइप का, कि हर समुदाय से एक फालतू का भी सीन डाल दो. ये तो एक नैरेटिव इंटेग्रिटी, जो स्टोरी टेलिंग इंटेग्रिटी डेविड लीन की मुझे अच्छी लगी, कि ये नहीं कि ये कोई मिसोजिनिस्टिक फिल्म है या एंटी वुमेन है, जो उन्हें नहीं लगा कि इस कैरेक्टर की जरूरत नहीं है, पता नहीं उन्होंने डेलिब्रेटली किया या ये मेरा विश्लेषण है, लेकिन उसमें उसको उन्होंने नहीं डाला है. और एक भी नहीं, आजकल जो है मतलब ये जो खासकर वो कल्चर में है ना, कि कोई भी फिल्म में एक सीन डाल दो 30 सेकंड का उसका, 30 सेकंड का इसका, एक फैंसी ड्रेस बना दो, तो वो नहीं किया है. दूसरी है कि इसमें करीब फिल्म के 6 मिनट बाद एक लॉरेंस बोलते हैं, एक अखबार उन्हें मिलता है, अरेबिक अखबार अरेबिक में लिखा हुआ है, तो वो कहते हैं कि ये जो चीजें यहाँ इसमें छपी हैं ये टाइम्स लंदन में नहीं छपी होगी। तो ये जो है आज से 100 साल पहले अभी जो ये चल रहा है कि गाजा वाले में या रशिया वाले में कि वेस्टर्न मीडिया का एक प्रोपोगेंडा है, इनका अलग व्यू है, तो ये चीजें जो है उस समय भी वो कहते हैं कि टाइम्स लंदन में ये नहीं छपी होंगी जो अरेबिक अखबार में ऐसा छपा है। तो ये एक मीडिया की दृष्टि से एक कंटिन्यूटी मुझे दिखती है। तीसरी कंटिन्यूटी उसमें कर्नल लॉरेंस जो है बहुत कोशिश करते हैं डिफरेंट ट्राइब्स अरब का एक साथ लाने की, ये समस्या अभी भी है। हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी एक ब्रॉडर फ्रेम जो अरब नेशनलिज्म है उसमें लाने का लोग। तो और चौथी जो है उसमें एक अमेरिकन कुरियर का पत्रकार आता है और वो कहता है कि कर्नल लॉरेंस को वो इसलिए खोज रहा है क्योंकि वो अमेरिका आइसोलेशनिस्ट पावर है उस समय, विश्व राजनीति में नहीं आना, लेकिन उसे ऐसा फिगर चाहिए जो दैट मेक्स द वॉर एक्साइटिंग फॉर द अमेरिकन्स, और जो कि ये भी एक कंटिन्यूटी है। तो ये सब जब मैं कम उम्र का था तो ये फिल्म देखा था तो ये सब मेरे दिमाग में नहीं आई थी, लेकिन इस बार जब मैंने देखा
तो मजे की बात है कि मैं पहली बार देखूंगा तो मुझे ये सब समझ में आ जाएगा क्योंकि आनंद ने समझा दिया है बड़े अच्छे से।
और मैं जैसे संसद में कहते हैं ना, मैं ज्यादा समय लेते हुए एसोसिएट करता हूं आनंद जी की रिकमेंडेशन के साथ। ठीक है, मेरी रिकमेंडेशन में यही जोड़ दिया जाए कि मैं भी देखूंगा। और
मेरा एकमात्र रिकमेंडेशन है एक फिल्म, और चूंकि नेटफ्लिक्स पे बड़ा जोर था आज तो नेटफ्लिक्स से ही एक फिल्म है और वो हाल ही में रिलीज हुई है, ऐ वतन मेरे वतन करके एक फिल्म आई है।
हाँ, कैसी है?
सारा अली खान, बहुत अच्छी फिल्म है, एक बहुत वास्तविक रियल स्टोरी पे बनी फिल्म है कांग्रेस रेडियो के नाम से। तो कांग्रेस रेडियो बेसिकली ये 1942 का जब आंदोलन शुरू हुआ और बहुत बड़े पैमाने पर धरपकड़ शुरू हो गई, सारे नेता जेल में डाल दिए गए, तो एक गांधीवादी थी वहां पर, बहुत युवा थी उषा मेहता, उन्होंने कुछ पैसे का इकट्ठा करके और कुछ और दोस्तों ने मिलके एक रेडियो शुरू किया और रेडियो के जरिए वो हर दिन एक प्रसारण करती थी और मैसेज पहुंचाती थी लोगों तक कि क्या करना है क्या करना। और इसमें बाद में राम मनोहर लोहिया जुड़ गए जो कि गांधी जी को भी अपना लीडर मानते थे, लेकिन साथ में वो एक तरह की सशस्त्र क्रांति भी करना चाहते थे कि जब ये सब चल रहा है पूरा देश में एक तरह की अराजकता मची हुई है 42 के आंदोलन के बाद, तब उसका फायदा उठा लिया जाए और एक और क्योस पैदा, बड़ा क्योस पैदा किया जाए ताकि अंग्रेज डिफेंसिव हो जाए। तो ये सब था और वो बहुत दिनों तक उन्होंने बहुत सक्सेसफुली छुपा छुपा कर चलाया उसको। तो सारा अली खान ने अच्छा काम किया है उसमें, राम मनोहर लोहिया।
एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आज का चर्चा का विषय था कि राम मनोहर लोहिया का ये वक्तव्य इंदिरा गांधी के लिए गूंगी गुड़िया आज सेक्सिस्ट माना जाएगा कि नहीं?
माना तो जाना चाहिए,
लेकिन आप जो है ना गुड़िया वो ट्रोलिंग के लिए तैयार रहे क्योंकि आप चुनाव के दौरान कांग्रेस रेडियो का प्रचार कर रहे हैं।
अच्छा, मतलब फिल्म रिकमेंड करना कांग्रेस का प्रचार होता है? हाँ, मतलब देश ही जब आहत भावनाओं का वो हो गया है तो फिर किसी भी चीज को किसी भी चीज से जोड़ा ही जा सकता है। इसके साथ हम आज की इस चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे। बहुत अच्छे रिकमेंडेशन हमारे तमाम पैनल साथियों ने दिए हैं। देखिए, सुनिए, न्यूज लॉन्ड्री को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारा जो इलेक्शन फंड है उसमें मदद कीजिए। ये वो आपकी कहानियां देश के अलग अलग हिस्सों से जाकर हमारे रिपोर्टर्स आप तक पहुंचाएंगे, और हमने एक बहुत बड़ा इलेक्शन फंड बना के छोटे छोटे कई सारे फंड इसीलिए बनाए हैं ताकि आपके अपनी पसंद की अपनी रुचि का जो विषय हो उसमें आप कर सकते हैं। तो ये विकल्प वहां पर है, इसको मदद करें। चर्चा के लिए आज शामिल होने के लिए मनीषा, हृदेश, आनंद, कांक्षी, भोपाल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
News Laundry is possible because of our paying subscribers. We don't run on corporate or government ads. You too can be part of changing the news model. Go to newslaundry.com/subscription. Be a part of the community that pays to keep news independent. For the smoothest News Laundry experience, download our app. Watch our shows, listen to our podcasts, read our reports. Stay informed, pay for news, protect democracy, save the world.